Thank you, Brother Armin.
Lord bless you. Good morning, friends.
धन्यवाद भाई और मैं
प्रभु आपको आशीष दूं।
शुभ प्रातः मित्रों, इस आराधनालय में यहाँ फिर से इस प्रातः होना अच्छा है। और जैसे ही भीतर आया, पीछे खड़ा हुआ सुन रहा था और अन्य भाषाओं में भविष्यवाणी को आते हुए उस अनुवाद के साथ, और मैंने लोगों से कहा कि स्थान भी भरा हुआ है, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैं इस व्यक्ति से नहीं बोलूं। ये भाई हिगनबॉथम है, यदि मुझे सही व्यक्ति मिला है तो बहुत लंबे समय से, ये महीनों हो गए कि मैंने उनसे हाथ नहीं मिलाया, परंतु ठीक यही जो मैं बोल रहा हूँ, जो उसने इस प्रातः कहा, ठीक इसी पर मैं बोल रहा हूँ। उसे ये नहीं मालूम, थोड़ी देर पहले मुझे स्वयं को भी नहीं मालूम था कि मैं क्या बोलने जा रहा था, और बस यही था। तब जो उसने कहा, और हम ये जानकर आनंदित हैं कि हम प्रभु यीशु के नाम में जमा हैं, उसके सुरक्षित पंखों तले। हम में बहुतों को खड़े हुए देख रहा हूँ, स्थान भरा है, ठसाठस है, और हमें ये देखकर अच्छा नहीं लगता। और जितनी जल्दी हो सकता है, हम कुछ भिन्न बनाने जा रहे हैं, एक बड़ा आराधनालय। अब मैं फीनिक्स से जल्द ही रिपोर्ट करने वाला हूँ। मैं पिछले रविवार रात्रि यहाँ पर था और प्रभु भोज के विषय पर बोला था। प्रभु भोज से पहले, प्रभु भोज रोटी खाना नहीं, प्रभु भोज का अर्थ बात करना, प्रति उत्तर देना, किसी से बात करना। और अब इस प्रातः यदि मैं थोड़ा सा लंबा लूं, क्यों कोई उनसे जो खड़े हैं अपनी सीट बदलेगा, और ये सराहनीय होगा कि आप उन्हें थोड़ी देर बैठने दें। मैं इस समय के प्रति विचारशील हूं जिसमें हम रह रहे हैं, मैं इस पर बहुत अधिक विचारशील हूं। जब मैं बातों को घटित होते हुए देखता हूं, मैं देखता हूं कि ये हो रहा है, मुझसे मुझ में कुछ है जो मुझे झकझोरता है, और मैं चाहता हूं कि अपना समय लूं और यत्न करूं। इस सुबह के संदेश में मैं एकत्व पर बात करना चाहता हूं, और मैं समय को लेना चाहता हूं, और इसे बस करना चाहता हूं, और इसे जितना सिद्ध मैं जानता हूं निकालकर सामने लाना चाहता हूं। और जैसे कि आप सब लोग जमा हैं, आपकी प्रार्थनाओं की कामना करता हूं। यदि आपकी बाइबल आपके पास है और मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो निकाल लें। इब्रानियों का पहला अध्याय, पहला, मैं इब्रानियों पहले अध्याय की पहली तीन आयतें पढ़ना चाहता हूं, और फिर उत्पत्ति 1:26 और 27 एक साथ बांधने को। और कोई मनुष्य कुछ नहीं कह सकता जो कहने के योग्य हो, जब तक कहने के लिए परमेश्वर सहायक ना हो कि वो कहे। और आज ये इस सुबह के संदेश के साथ भी है, परमेश्वर और लोगों का एकत्व। अब इब्रानियों का पहला अध्याय हम इसे पढ़ते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है।
Brightness of his glory and the express image of his person.
वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दहने हाथ जा बैठा। और अब उत्पत्ति में पहला अध्याय और 27वां पद मैं इसे पढ़ता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब आइए एक क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं जबकि प्रार्थना करते हैं। और मैं निश्चित हूं कि इस आकार की भक्त मंडली में बहुत से निवेदन होंगे, इसलिए संभवतः हम अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं, जिनके निवेदन हैं, उनके ये करने के द्वारा ये जाना जाए कि हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को ये प्रदान करे।
Lord, we have assembled under the roof of this tabernacle.
प्रभु हम इस आराधनालय की छत तले जमा हैं और हम इस बात के लिए धन्यवादित हैं कि आज हमारे पास छत है, परंतु हम सबका यहाँ जमा होने का इससे अधिक बड़ा उद्देश्य है और हम अनुभव करते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा हम सब सर्वशक्तिमान के पंखों तले जमा हैं।
That he, as a hen would cover her chickens, would
तब वो जैसे मुर्गी अपने चूजों को ढांप लेती है, हमें भी उस सब से बचा लेगा जिसकी हम उससे इच्छा करते हैं कि हमारी रक्षा करे, कि वो हमारे ऊपर मंडराएगा, हमारा पालन करेगा और हमें आज रोज की रोटी देगा, शारीरिक और आत्मिक दोनों, ताकि हमारे शरीर में शक्ति बनी रहे और हम पृथ्वी पर चलते फिरते रहें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बनी रहे कि परमेश्वर के वचन को भूखे लोगों के लिए लाएं और हमारे होठों और हृदयों के साथ रहें ऐसे ताजे अभिषेक के तेल के साथ कि इस दिन को हम दूसरों को बताने के योग्य हों कि हम कहाँ रह रहे हैं और समय की दशा। परमेश्वर हम पूरी रीति से आप में विश्वास करते हैं, कोई स्थान नहीं बचा जहां कोई जा सके। हमने पतरस के समान अनुभव किया उस दिन जब यीशु ने कहा तुम भी जाओगे, उसने कहा प्रभु हम कहां जाएं, केवल तेरे ही पास अनंत जीवन के वचन है और इसीलिए हम आपके नाम में जमा हैं इस प्रातः, क्योंकि केवल आपके पास ही अनंत जीवन के वचन है। हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम में से प्रत्येक के लिए आप इसे वास्तविक बना देंगे कि हमारे हृदय के भीतर से जलने लगे, हमारे प्राण सामर्थ्य हो जाएंगे, हमारे शरीर चंगे, हमारी आत्माएं चंगी, हमारे प्राण नए बन जाएं, इस रीति से रचित हों कि परमेश्वर हमें ले लेगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनको जो दीवार के सहारे चारों ओर जगहों में खड़े हैं ड्योड़ियों पर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें सामर्थ्य दें और जानते हुए कि ये टेप पर चल रहा है जो कि विभिन्न देशों में जाएगा, दूर बाहर देशों में, पृथ्वी की जनजातियों में, और परमेश्वर मैं पूरी रीति से आप में विश्वास करता हूँ, शक्ति वचन और अभिषेक दें और ये उसी प्रकार हो सके जो आपके पास इस घड़ी के लिए है। हम स्वयं को आपको समर्पित करते हैं, अब हमारे सुनने, हमारी आवाज, हमारे ध्यान, वो जो हम में है आपको समर्पित करते हैं कि आप हमें हम में आ जाएंगे, हम में होकर कार्य करें और प्रकट करें कि आपकी महान उपस्थिति हमारे साथ है, क्योंकि हम ये यीशु तेरे पुत्र के नाम में मांगते हैं, आमीन।
The word oneness means to be one with.
एकत्व शब्द का अर्थ एक के साथ, एक वाद, संयुक्त। अब ये एक अच्छा विषय है और ये अधिक ध्यान देने योग्य जितना कि मैं देने योग्य हूँ। पृथ्वी के किसी विशिष्ट व्यक्ति से अधिक ध्यान देने के लिए अधिक योग्य हो सकता है, परंतु मैं आप पर इसके लिए अपना दृष्टिकोण प्रकट करना चाहता हूँ और किसके साथ परमेश्वर हमें देगा। अब इसमें सिखाने की शिक्षा और उन भाइयों को जो इस पर इस टेप को सुन सकते हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये ठोकर नहीं होगा, परंतु इस पर विचार करने का कारण बनेगा, बल्कि सोच विचार कि आप प्रार्थना के साथ अध्ययन करें और ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन के संग तौलें कि ये परमेश्वर का है या नहीं। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ ये सदा इसी प्रकार से होना चाहिए, बातों को वचन के साथ तौले, क्योंकि वचन ही एक चीज है जो टिके रहने योग्य है। यीशु ने कहा पृथ्वी और आकाश दोनों टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। इसी कारण मैं इसका विश्वास करता हूँ और इसका विश्वास करना परमेश्वर की योजना है। मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर का पूरा किया गया कार्य वचन में लिखा है। इसलिए यदि कोई भी बात परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है ये परमेश्वर का नहीं हो सकता या परमेश्वर की योजना। मैं विश्वास करता हूँ यही योजना है। जब वचन में परमेश्वर का आत्मा स्वयं वचन को जीवित रखता है, स्वयं ही कार्य करता है, ये वचन को जीवन में लाता है जैसे एक बीज। अब बागे अदन में पहला पुरुष और पहली स्त्री परमेश्वर के संग सिद्ध तालमेल में थे, इतने कि परमेश्वर किसी भी समय नीचे आ सकता था जब भी वो चाहता और आदम और हवा के साथ मुंह से कान में बातें करता था। ये सिद्ध एकत्व था, परमेश्वर और उसकी सृष्टि। परमेश्वर मुंह से आदम और हवा के कान में बातें करता था और वे इतने सिद्ध तालमेल में परमेश्वर के साथ थे। परमेश्वर और उसका परिवार एक थे। कोई भी व्यक्ति और उसका परिवार एक सही, अच्छा, कुलीन, आज्ञाकारी परिवार एक दूसरे के साथ एक है। कोई भी परिवार और यदि परिवार में कुछ है जो अलग अलग है तो ये ठीक नहीं। परिवार कहीं टूटा हुआ है, वे सब एक होने चाहिए। पिता माता के साथ, माँ पिता के साथ, बालक अभिभावक के संग, अभिभावक बालकों के संग, सब एक मत। और जब आप ये देखते हैं तो आप एक सुंदर चित्र देखते हैं।
And his purpose as Father supreme was to be one with his
परमेश्वर का यही उद्देश्य है पृथ्वी का परिवार आदम और हवा। केवल एक ही मार्ग है कि वे एक परिवार के साथ हों या परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव उनमें था, इसलिए उन्हें परमेश्वर के स्वभाव के साथ बनाया बजाय एक दूसरे के, और परमेश्वर वे सारे एक हो गए। क्या ये सुंदर चित्र नहीं? परमेश्वर अपने परिवार में पिता सबके ऊपर, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, हृदय घात नहीं, कुछ नहीं, केवल आनंद, ना बोलने वाला, कभी भी बीमार नहीं, कभी हृदय घात नहीं, बस परमेश्वर के साथ एक। क्या ही चित्र है, क्योंकि परमेश्वर का ही स्वभाव इन लोगों में था और इसलिए उन्होंने क्या किया, वे परमेश्वर के संग एक पंक्ति में चलते रहे, परमेश्वर उनके साथ उन्हें एक कर दिया। जब यीशु ने यूहन्ना में प्रार्थना की 17:11 उनके लिए जो संडे स्कूल का विषय लिखना चाहते हैं, मेरे पास इस प्रातः बहुत से हैं। यूहन्ना 17:11 यीशु ने प्रार्थना की कि कलीसिया और वो वैसे ही एक हों जैसे वो और पिता एक थे, कि कलीसिया हम मसीह की देह के सदस्य के समान आपस में एक होंगे जैसे कि वो और पिता एक है। उस दिन हम जानेंगे कि वो पिता में था, पिता उसमें और वो हम में, ये एक संग होना, हम एक थे। क्या ही एकता, एकवाद जो होगा। परमेश्वर को उसकी कलीसिया में देखें, जब तक कि प्रत्येक सदस्य एक सिद्ध संगति में एक दूसरे के संग और परमेश्वर के, यही कलीसिया जिसके लिए यीशु आ रहा है, यही जब उसकी प्रार्थना का उत्तर आएगा कि हम एक होंगे। केवल संगति का यही आधार जो परमेश्वर ने कभी रखा, अपने और उसकी कलीसिया के लिए, लोगों में उसका अपना एकवाद संगति का केवल एक यही आधार। इस आधार के लिए केवल एक ही मार्ग है, एकता के द्वारा उसके संग सदा के लिए एक हो जाएं। जैसा कि जब आप अपने पति के साथ एक हो जाएं, स्त्री अपने पति के संग एक हो जाए, ये मृत्यु तक की वाचा है। अब जब आप परमेश्वर के साथ एक हो, ये एक ही बात है कि कलीसिया मसीह के साथ एक हो जाए जब तक मृत्यु अलग ना करे। और तब यदि आप कभी पाप नहीं करते या कुछ गलत नहीं करते, आप सदा के लिए परमेश्वर के साथ एक हैं। और केवल मृत्यु ही आपको परमेश्वर से अलग करती है, और शारीरिक मृत्यु नहीं, परंतु मृत्यु का पाप, पाप मृत्यु है, और ये आपको परमेश्वर से अलग करता है। इसलिए उसकी आत्मा के सामर्थ्य के साथ एक होना अनंत जीवन है। आप अनंत के लिए परमेश्वर के साथ एक होंगे। ओ, मैं इस पर थोड़ी देर बाद आना चाहता हूँ। अनंत परमेश्वर के साथ अनंतता के लिए एक हो गए, उसके साथ सिद्ध तालमेल में, सिद्धता में एक साथ हो गए, एक कलीसिया। वो सब परमेश्वर और उसकी कलीसिया दोनों एक हैं, एक साथ मिल गए। और यदि आप ध्यान देंगे कि हवा आदम के साथ कैसे एक थी, वो उसका एक भाग हो गई थी। परमेश्वर, क्या आपने उत्पत्ति 1:27 में ध्यान दिया? उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, उसने उनकी सृष्टि की। वो मनुष्य था, नर और नारी दोनों। जब वो आत्मिक जीव हुआ, नारी और नर का, तब परमेश्वर ने उसके एक ओर से पसली निकाली। क्या आपने ध्यान दिया? देह का भाग, उप उत्पाद था, परंतु आत्मा नहीं, स्त्री की देह उप उत्पाद थी। जब सृष्टि पूरी हो गई थी, परमेश्वर ने आदम की एक ओर से पसली निकाली और एक स्त्री बनाई, परंतु आत्मा नहीं, आत्मा आदम का भाग थी, क्योंकि वो पुरुष और स्त्री दोनों था। आत्मिक रीति पर बोल रहा हूँ, नर और नारी दोनों। क्या आप इस महान चित्र को नहीं देखते? हम शरीर में अलग हैं, हम एक उप उत्पाद के समान हैं, एक सृष्टि किए हुए जीव, पवित्र विवाह के द्वारा, परंतु आत्मा में हम पुत्र और पुत्रियां हैं। कोई दूसरी आत्मा नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर का आत्मा।
We are in His likeness, in His unity, in the perfect image.
हम उसकी समानता में, उसकी एकता में, जीवित परमेश्वर की सिद्ध छवि में, क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो गए। अलग नहीं, परंतु वही आत्मा, वही परमेश्वर, वही व्यक्ति अनंतता में विवाह से जुड़े हुए।
See how God planned it that we should be.
देखिए, परमेश्वर ने कैसे ये योजना बनाई कि हमें भिन्न नहीं होना चाहिए, केवल वो, किसी और जनजाति का, कोई और प्राणी नहीं, परंतु वास्तविक एकता और सर्वशक्तिमान के वंश, पवित्र बंधन द्वारा किया गया। अब देह माता पिता से आती है, परंतु आत्मा परमेश्वर से आती है। परमेश्वर ने स्वयं को अलग किया, जैसे आदम अलग किया गया था। पेंतिकॉस्ट के दिन हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा, वो अग्नि स्तंभ ने अपने को अलग अलग किया और कलीसिया के हर सदस्य के ऊपर ठहर गया। परमेश्वर स्वयं को एक साथ कर रहा था। तब उस झुंड के लोगों के साथ ये क्या करता है? प्रभु यीशु की एकता वाली देह को वापस लाता है, एक साथ हो रहे हैं। और आज इस महान अलगाव में जिसमें हम रह रहे हैं, नामधारी वाली भिन्नताएं और आदि आदि, क्या ही खेद का विषय है, क्या ही अपमान है। स्वर्गीय विवाह में अनंत परमेश्वर से जोड़े गए, उसका भाग, परमेश्वर का भाग। देह में मैं ब्रणम हो गया अपने पिता ब्रणम के कारण, आप अपने पिता और माता के कारण, परंतु आत्मा में हम परमेश्वर के साथ एकता में हो गए, परमेश्वर का भाग। यही कारण है कि आत्मा मर नहीं सकता, वो जो मुझ पर विश्वास करता उसके पास अनंत जीवन है, और उस शक्ल सूरत में वो यहाँ पृथ्वी पर है, और उसकी समानता में उसे अंतिम दिनों में जिला उठा खड़ा करूँगा। एक आत्मिक जन नहीं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की महिमामय देह के समान एक देह होगी। प्रभु यीशु की महिमामय देह उस छवि में उठ खड़ी हुई। यीशु ने कहा लाजर की कब्र पर जाते हुए, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, वो जो मुझ में विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, और जो कोई जीता और मुझ में विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। मुझ में विश्वास करता है, ना कि मुझ पर, परंतु मुझ में उसमें होते हुए विश्वास कर रहा है। यदि तुम मुझ में बने रहते हो और मेरा वचन तुम में उसमें विश्वास कर रहे हैं, ओ मुझे आशा है पवित्र आत्मा इसे आपके अंदर बैठा देगा। आप एक छोटा झुंड हैं, इसलिए सप्ताह भर से प्रार्थना मांग रहा हूँ परमेश्वर से। मैंने ये विषय चुना है कि आपको दिखाऊं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। उसमें विश्वास कर रहे हैं, आप उसमें विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप उसमें ना आ जाएं, या वो आप में ना आ जाए, तब आप उसमें विश्वास कर रहे हैं, तब आपके पास अनंत जीवन है। जब तक आप अनंत जीवन नहीं पाते, आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, तब फिर अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन आप में है, तब आप उसमें विश्वास कर रहे हैं। तुम मुझ में, मैं तुम में, ताकि वे एक हों, पिता जैसे कि आप और मैं एक हैं, परमेश्वर मसीह में, मसीह कलीसिया में, समझे, जैसा कि हम एक हैं, वैसे ही वे एक हों। तब आप कैसे एक हो सकते हैं? यदि तुम मुझ में बने रहते हो और मेरे वचन तुम में, देखिए बने रहना, मेरे वचन तुम में, तब मांगो जो भी तुम मांगोगे, क्योंकि अब ये तुम में नहीं, ये वचन है जो तुम में है, और वचन परमेश्वर है। अब परमेश्वर का वचन एक तलवार है। इब्रानियों का चौथा अध्याय ऐसा कहता है, इब्रानियों 4:12, अब ये एक तलवार है, और तलवार एक ठीक सुप्त चीज है, यदि वो किसी के हाथ में ना दी जाए, या एक सामर्थ के, और ये, परंतु इसे एक हाथ चाहिए जो इसे पकड़े, विश्वास का हाथ। अब वो विश्वास का हाथ ये निर्भर करता है कि कितना मजबूत है। ये विश्वास का हाथ इतना मजबूत हो सकता है कि अंधकार में एक छोटा सा छेद बना दे, और कहता है विश्वास के द्वारा मैं बच गया हूँ। ये महान कटाव है, परंतु फिर यदि ये हाथ इतना मजबूत है कि जो तलवार को समर्पित है, यही सब है जो ये काट सकता है, परंतु यदि ये एक मजबूत हाथ, ये हर चीज को काट देगा जो शैतान सामने रखेगा, और परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा को उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में चमका देगा। यदि ये एक मजबूत हाथ विश्वास का है, आश्चर्य कर्मों के दिन यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, मार्ग पर काटता चला जाएगा। ये उसके पीछे जो हाथ है उसकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है, और तलवार सान चढ़ी हुई है। इब्रानियों 4 ने कहा, ये दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है, जो दोनों ओर से काटती है, और हड्डी और गूदे को वार पार छेदती है, और जोड़ों में और हृदय के विचारों को जांचती है, शारीरिक से आगे निकल जाती है और आत्मिक क्षेत्र में जाती है, और हृदय के विचारों को पकड़ती है और उन्हें प्रकट करती है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, अब वचन काट देगा यदि उसके पीछे जो हाथ ऐसा है जो इसे भीतर घुसा दे। ये अपना स्थान पा लेगी और हर प्रतिज्ञा को काट कर निकाल लेगी और आपको दे देगी यदि आपके पास पर्याप्त मजबूत हाथ इसके पीछे है। तलवार इसे अपने हाथ में उठा लें, एक विश्वास का हाथ, इसे कस कर पकड़ लें, इस पर पकड़ बना लें और शत्रु का सामना करने चल दें। कैसे वो खतना रहित शत्रु कभी अनंत परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रह सकता है? इसलिए आप वचन की तलवार को लेते हैं और हर प्रतिज्ञा आपकी है, विश्वास के मजबूत हाथों में पकड़ लें, आगे बढ़ें। यदि आपको चंगाई की आवश्यकता है, इसे वचन से काट दें। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। यदि आपको उद्धार की आवश्यकता है, तो बाइबल की हर प्रतिज्ञा आपकी है। ये वहाँ पीछे है और शैतान इसे छिपाने का यत्न करता है, परंतु तलवार को ले और इसे अंधकार में घुसाते चले जाएं, जब तक परमेश्वर की ज्योति आपके प्राण पर चमकने न लगे और प्रतिज्ञा आपके पास है, वो इसे करेगा। आदम भाग था, यानी हवा आदम का भाग थी, वो उसके मांस में का मांस और हड्डी में की हड्डी, और यही जो सही एकता है और यही ठीक कलीसिया की एकता है, उसकी आत्मा की आत्मा, उसके वचनों का वचन, वचन से कभी भी नहीं भटके। वास्तविक सच्चा विश्वासी किसी भी वचन पर समझौता नहीं करेगा। याद रखें, ये केवल एक ही वचन था जिस पर हवा ने समझौता किया, एक वचन, परंतु सच्चा विश्वासी किसी भी वचन पर समझौता नहीं करेगा। ये विश्वास की तलवार को पकड़े रहेगा और हर दिव्य प्रतिज्ञा का दावा करता है जो परमेश्वर ने किया। यही बात है, वे हमारे लिए परमेश्वर का उदाहरण थे, जो हमें होना चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने आप को असफल नहीं दिखाया। जब वे बोले, परमेश्वर ने उत्तर दिया। उसने उन पर दृष्टि रखी दिन के समय, उसने उनकी अगुवाई की, उन्हें खिलाया, उनसे प्रेम किया, उनके संग निरंतर बातें की। सारे समय वे परमेश्वर की छवि में थे और परमेश्वर उनमें। इसी से ही संगति होती है, इसी से एकता बनती है। परमेश्वर अपनी कलीसिया में है, यही एकता है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, जाने के लिए बहुत से स्थान है। उसके साथ जुड़ गए, ये अनंत जीवन है, और उसके साथ एक होने की केवल एक विधि है कि उसके हर वचन के पास आए। ये ठीक बात है, हर प्रतिज्ञा को लें और इसका विश्वास करें। अब हवा जुड़ी हुई थी जब तक उसने एक वचन न तोड़ा या वचन का सत्य होने का संदेह किया, अलग हो गई। हर वचन, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, परंतु हर वचन से। इसलिए हम परमेश्वर में हो सकते हैं जुड़े हुए, क्योंकि आदम और हवा ने गिरावट से पहले वचन का अविश्वास किया। इस बात का उदाहरण था कि हम उसमें क्या हो सकते हैं। उसके संग जुड़ जाने से जीवन है और उससे अलग होने से मृत्यु है। अब यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम जानते हैं कि हम गलतियां करते हैं, परंतु आपको उन्हें नहीं देखना चाहिए। ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप सदा इन्हें करते रहेंगे। परंतु आप देखिए, वो अपने नियम पर चल रहा है, जो उसने कहा उसका अनुकरण कर रहा है। ठोकर खाना, गिरना, इससे इसका कोई मतलब नहीं। एक वास्तविक सच्चा दास, यदि वो ठोकर खाएगा, वो फिर से उठ खड़ा होगा। यदि वो लड़खड़ाता है, परमेश्वर उसे खींचकर वापस मार्ग में ले आएगा, जब तक कि वो अपने कर्तव्य के मार्ग पे है। परंतु यदि वो कर्तव्य मार्ग से हट गया, तो परमेश्वर की उसके लिए बाध्यता नहीं। परंतु जब तक वो कर्तव्य मार्ग पर है, परमेश्वर उसके लिए बाध्य है, जानते हुए कि वो बस एक पुरुष या स्त्री है। वो उनके लिए बाध्य है, उस व्यक्ति के लिए, जब तक वे कर्तव्य के मार्ग पर है। अब कलीसिया मसीह के साथ विवाह के लिए वचनबद्ध है। विवाह अब तक कभी नहीं हुआ, ये मेमने के विवाह भोज में होगा। इसलिए हम देखते हैं कि अब कलीसिया वचनबद्ध है, जैसे एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ वचनबद्ध है। जब वे वचनबद्ध हैं, तो वो क्या करता है? वो सब प्रकार की चीजें प्रदान करता है, उसे उपहार भेजता है, उसे अच्छा अनुभव करवाता है। भाई, यही मसीह अपनी कलीसिया के साथ कर रहा है। वो हमें आत्मा के वरदान भेज रहा है। आप कैसे उसके साथ वचनबद्ध हो सकते हैं? तब जब आप इन वरदानों का इनकार कर रहे हैं जो हैं, ये तो प्रेम की निशानी है। ये परमेश्वर का चिन्ह कलीसिया के लिए है। यीशु ने ऐसा कहा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। अब इन बातों को स्मरण रखें। कलीसिया को हर वचन का विश्वास करना चाहिए, हर प्रतिज्ञा, हर बिंदु, और इसे स्वयं के लिए दावा करना चाहिए और स्वयं इसमें अभ्यास करना चाहिए। यदि मैं किसी लड़की के साथ वचनबद्ध हूँ और मैं कुंवारा हूँ और मैं उसे कुछ भेजूंगा, एक मंगनी की अंगूठी, और वह उसे नहीं पहनेगी, तो ये दर्शाता है कि वो मेरा विश्वास नहीं करती, वो मेरी दुल्हन नहीं बनना चाहती। और यदि मसीह अपनी कलीसिया को उपहार भेजता है जिनकी उसने प्रतिज्ञा की है, और वे उसका इनकार करें और कहें ये ऐसा नहीं है, वे मसीह की दुल्हन नहीं बनना चाहते, वे किसी और प्रेमी से अपनाए हुए हैं और मसीह दूल्हे से नहीं। इसलिए वास्तविक कलीसिया प्रतिज्ञा को बनाए रखती है और सबका पालन करती है, और जो वरदान परमेश्वर भेजता है उन्हें स्वीकार करती है। ये ठीक बात है। अब पहली मानव जाति ने स्वयं को परमेश्वर पर विश्वास करने से हटा लिया, उसके वचन का अविश्वास करने के द्वारा और शैतान का एक झूठ सुनने से। अब ये पहली चीज थी जिसने संगति से अलग कर दिया इस शानदार एकता से। अब देखिए, आदम और हवा इस स्थिति में थे कि कभी ना मरे, इस स्थिति में कि कभी बूढ़े ना हो, कभी बीमार ना हो, कभी चिंता ना करें। आप कहते हैं, निश्चय ही मैं चाहता हूँ मैं ऐसा हो सकूं। मुझे मेरे पास आपके लिए खबर है, आप उसी स्थिति में हैं। परमेश्वर ने हर जीवधारी को पृथ्वी पर रखा है इसी स्थिति में। सहमति क्या थी? यदि तुम मेरे वचनों को मानोगे, यदि मेरा वचन, यदि तुम इसका पालन करोगे, इसका विश्वास करोगे और इसका आचरण करोगे। परंतु पहली बार कि हवा ने अविश्वास किया, परमेश्वर ने जो कहा एक शब्द बाहर निकाल दिया, तो उस महान एकता से संगति को तोड़ दिया। और उस घड़ी की कलीसिया ने परमेश्वर की बाइबल के एक वचन का अविश्वास किया और उसे किसी और स्थान पर रखा। जब उन्होंने उस शानदार संगति को तोड़ दिया जो उन्हें दी गई थी और अलग हो गए, जैसे ही उसने ये किया, मृत्यु मरणहार में बैठ गई। केवल वो ही मरणहार नहीं, परंतु उसका आत्मिक जीवन में भी उसने परमेश्वर से संबंध तोड़ दिया जिस घड़ी उसने अविश्वास किया। कोई मनुष्य विश्वास नहीं कर सकता, ये यहाँ है, कोई मनुष्य नहीं, कोई स्त्री नहीं, शैतान के झूठ का विश्वास नहीं कर सकता। कोई भी शैतान के झूठ का विश्वास नहीं कर सकता जब तक कि वे परमेश्वर के सत्य का अविश्वास ना करें। इसलिए आप देखते हैं, हवा, आदम, इस प्रातः ये हमें कहाँ रखता है? अब हम गंभीरता से सोचें, क्योंकि हम इसके बाद कभी भी सोचने योग्य ना होंगे। इस मरणहार जीवन के बाद आपका सोचना अब है, आप इसके बाद नहीं चुन सकते, आपको अभी चुनना है, क्योंकि ये चुनने का दिन है, अपना निर्णय लेना है। अब स्त्री एक वचन, न कि वो पूरा वाक्य, बस एक शब्द। उसने परमेश्वर से प्रश्न किया, क्योंकि ये उजियाले में उसे प्रदान किया गया था कि वो वचन प्रश्न योग्य था। परमेश्वर के वचन पर प्रश्न नहीं हो सकता, उसका वही अर्थ होता है जो उसने कहा। परंतु उसने इस पर प्रश्न किया क्योंकि ये उसे उपहार दिया गया था, और निश्चय ही परमेश्वर का ये अर्थ नहीं, परंतु उसका यही अर्थ था। हर वचन जो परमेश्वर कहता है उसका अर्थ है, और उसको निजी अनुवाद की आवश्यकता नहीं। ये बस वैसा ही है जैसा उसने कहा। ठीक है, कहते हैं आप बाइबल के विषय में कैसे जानते हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे परमेश्वर ने इस बाइबल की अगुवाई की है। वो अपने वचन पर ध्यान रखता है। उसे मालूम था कि नास्तिक अविश्वासी अंत के दिनों में उठेंगे, इसलिए उसने इस पर ध्यान किया। परमेश्वर का ठीक यही अर्थ है। अब हमारे लिए ठीक यही मार्ग है। अब हमें इसका विश्वास करना चाहिए। इसमें से एक वचन का हटाना, हम अपनी संगति को खो देते हैं, मृत्यु में चले जाते हैं, परमेश्वर से अनंत अलगाव, जैसा आदम और हवा ने किया। हमें परमेश्वर के सत्य का विश्वास करना चाहिए। मैं इसे फिर कहूँ, परमेश्वर की बाइबल के किसी वचन का अविश्वास ना करें, परंतु ये ना कहें हाँ मैं इसका विश्वास करता हूँ, और कहें परंतु नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस विषय में आप इसका विश्वास करें, आप इसे स्वीकार करें। यदि आप इसे एक और रख कर कहते हैं, अच्छा मेरी कलीसिया इस प्रकार विश्वास नहीं करती, तो आप ये विश्वास नहीं करते कि ये परमेश्वर का वचन है, और आप उसी दोष के अधीन होकर चले जाएंगे। आपने स्वयं को अनंतता से अलग कर लिया, जबकि आपके पास अवसर था कि उसके साथ जुड़ जाते। अब स्मरण रखें, इस पे प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक वचन था जो परमेश्वर के वचन में का था। और अब यदि परमेश्वर के थोड़े से वचन थे जो लोगों को मानने चाहिए थे, और उन थोड़े से वचनों में से एक को गलत प्रस्तुत किया गया जो मृत्यु का कारण बना। देखिए, वचन जो आज हमारे पास है, समझे, हमें हर एक को स्वीकार करना चाहिए, उन्हें पकड़े रहना चाहिए, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के समान उसमें प्रवेश करना चाहिए। और परमेश्वर की सच्ची पत्नी यही करेगी, सच्ची वचनबद्ध पत्नी। अब मैं आशा करता हूँ कि ये बातें नीचे गहराई में जाती हैं, ताकि हम इन्हें समझ सकें।
What was the first thing that caused Eve to disbelieve God's word?
वो पहली क्या बात थी जो हवा के द्वारा परमेश्वर के वचन का अविश्वास का कारण बनी? ये क्योंकि शैतान ने अधिक बुद्धि की प्रतिज्ञा की थी, तुम बुद्धिमान हो जाओगे। अब आप देखते हैं कि मानव जाति सदा किसी चीज के पीछे भागती है, और हवा अधिक बुद्धि के लिए पहुंच कर रही थी। अब आइए एक मिनट के लिए रुकते हैं। क्या आज संसार की यही दशा नहीं है? वे अधिक बुद्धि चाहते हैं, अच्छा वर्ग, उच्च शिक्षित, कुछ ऐसा जो भिन्न हो, अधिक बुद्धि, यही जो हवा चाहती थी। परंतु मैं ये भी कह दूं कि कोई भी बुद्धि परमेश्वर के आगे नहीं निकल सकती। अब भी ये ऐसी नम्र रूप में है कि लोग इसे चूक जाते हैं। शैतान, जैसा कि मैंने बहुत सी बार कहा है, वो चमकता है, परंतु सुसमाचार उज्ज्वलता है। ओ, चमकने और उज्ज्वलता में बहुत अंतर है। हॉलीवुड चमकता है, परंतु कलीसिया परमेश्वर के प्रेम में, प्रेम की सामर्थ में उज्ज्वलता है। हॉलीवुड चमकीला है, बहुत ही अंतर है उज्ज्वलता और चमकने में। हम चमकना नहीं चाहते, हम उज्ज्वल होना चाहते हैं। आज ये सोचना बहुत बुरा है, परंतु कलीसियाएं अपनी ही समझ की ओर झुक रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे हवा ने किया। उसने सोचा, क्योंकि ये उसके सामने प्रस्तुत किया गया था, ये बहुत वास्तविक दिखाई पड़ा। ओ, इसे समझने में ना चूकें, ये इतना वास्तविक दिखा, कुछ ऐसा जो परमेश्वर ने कहा उसमें मिलाया जा सके। ये ऐसा दिखाई पड़ा कि उसके पास कुछ ऐसा हो जाएगा जो परमेश्वर ने उसे नहीं बताया। वो बस इतनी ही दूर जा सकी, परमेश्वर ने उसे सीमा रेखा नहीं दी थी जैसे उसने समुद्र के लिए तय किया है। ये आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि चांद इसका ध्यान रखता है। उसने सोचा, हवा ने सोचा कि शैतान के पास कुछ गोले पर है, जैसा कि हम कहते हैं, पर अब भी परमेश्वर के साथ एकता में थी और फिर भी समझदार, उसके पास अच्छी शिक्षा हो जाएगी। परंतु परमेश्वर ने उसके लिए उतना ही ठहराया था, ठीक जितनी उसकी आवश्यकता थी, और उसने कलीसिया के लिए भी वैसी चीज ठहराई है। यह धर्म विद्यालय का घुमाना नहीं, या अंदर या बाहर घुमा कर निकालें, एक बाइबल का विद्यालय, परंतु ये ठीक जो लिखा हुआ है और यहोवा यूं कहता है, इसे बदल नहीं सकते। परंतु कलीसियाएं अपनी ही समझ पर झुकी हुई हैं। वे सोचते हैं संभव है कि ये वह उनके लिए कुछ तय है और ये एक धोखा है। मुझे यहाँ एक मिनट के लिए रुकना है। सारा संसार इसी पर आधारित है। राष्ट्र की सारी अर्थव्यवस्था इस झूठे विचार पर आधारित है। आपको अपने पर एक छोटा उपहास बताता हूँ। ये उपहास नहीं, परंतु आप सब जानते हैं कि हम अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं, या हमें करना चाहिए। और कुछ समय पहले मैं एक कार्यक्रम देख रहा था वहाँ पश्चिम में, बहुत पहले, लगभग 3 वर्ष हुए। एक सुबह मैं अपने कमरे में उठा और वहाँ मेरे कमरे में टेलीविजन रखा था, और मैंने सोचा खराब मौसम लग रहा है, और मैंने सोचा भाई 8 बजे उन्हें समाचार देने चाहिए, और मेरे पास छोटा सा कार्य विस्तार था, इसने कहा समाचार निश्चित समय पर है। और मैंने समाचार खोला, और जब मैं समाचार सुन रहा था, और तब मैंने ध्यान दिया कि समाचार के बीच में एक सामान का विज्ञापन चल पड़ा, एक प्रकार का साबुन, और कहा महिलाओं आपको अब अपने बर्तन और नहीं धोने पड़ेंगे, केवल आपको ये करना है कि इसे नीचे पानी में डुबा दो और कुछ मिनटों के लिए छोड़ दो, और इसे उठा लो और इसे पानी के निकासी पर रख दो, बस हो गया। मैंने सोचा जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं एक हीरो हो जाऊंगा, और मैंने इस विशेष चीज का नाम लिख लिया। मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं गया और अमुक चीज की एक बोतल ली, और मैंने इस सब की पिचकारी पानी से भरी, और इसे निरंतर घर की सफाई करते रहने को कहा, और मैंने बच्चों की प्लेटें लेकर और सारा बचा खाना हटा दिया, और आदि आदि, और अंडा उस पर चिपका हुआ था, और पानी में डालकर कुछ मिनटों के लिए पड़ा रहने दिया, और उन्हें निकाल कर वहाँ सेट कर दिया। वहाँ उस पर उतना ही अंडा चिपका था जितना कि पहले डालते समय था। देखिए, मैंने खो दिया होता, मेरी पत्नी मुझ में अपना विश्वास खो देती उस समय। आप देखते हैं क्यों राष्ट्र, क्यों ये राष्ट्र लोगों को धोखा खाने देता है। उन्हें ऐसा कहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये नियम के विरुद्ध होना चाहिए। इस आधुनिक सिगरेट के विषय में विज्ञापन क्या ही लज्जाजनक है, भरी कार में खांसी नहीं, इस प्रकार का, इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये क्या कर रहा है, ये धोखा दे रहा है, वहाँ उन सब में मृत्यु है, विस्की पीने में मृत्यु है, बोतल में बलात्कार, कत्ल, पागलपन है, परंतु फिर भी हमें अनुमति मिली हुई है कि इसे अपनी योजनाओं में और विज्ञापनों में रखें, जैसे एक वो जो दादा ने पिया, जीवन के बाहर अधिक आनंद, विशेष प्रकार की बियर और अल्कोहल। ये क्या है, ये धोखा दे रहा है। यहाँ लोगों के सामने कुछ ऐसा है कि लोग स्वयं को इससे मार लें, और हम इसे करने देते हैं।
And the churches, through man-made dogma, man-made creeds, is presenting a great front to the people, and they're falling for it, which is death.
और अब मैं घूमकर इस पर आता हूँ, और कलीसियाएं मनुष्य के द्वारा बनाए गए धर्म सिद्धांत, मनुष्य के बनाए मत्सार बहुत से लोगों के सामने रख रहे हैं, और वे इसके लिए भाग रहे हैं जो कि मृत्यु है। कोई कलीसिया आपके प्राण को शुद्ध नहीं करती, कोई मत्सर आपके प्राण को शुद्ध नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह का लहू आपके प्राण को शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर का उपाय ये समर्थित है।
So it's just false. But people lean upon the understanding of the wise. And they die by it. And people today
इसलिए ये झूठा है, परंतु लोग बुद्धिमानों की समझ पर निर्भर करते हैं और वे इससे मरते हैं। और आज लोग मत्सार और संप्रदाय पर निर्भर हैं और लाखों कटने वाले सूरों के समान उनका मार्ग नरक के अंतहीन कुंड में जा रहे हैं। ये क्या ही लज्जाजनक है। हमें अपनी समझ का सहारा लेने को मना किया गया है। हम कोशिश नहीं कर सकते। आप कहते हैं क्या मनुष्यों की सभा इस योग्य नहीं कि इस विषय में अधिक कहें बजाय एक व्यक्ति के? नहीं, यदि वो एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन बोलता है। एक बार 400 नबी दो राजाओं के सामने आए और वे अपनी समझ का सहारा ले रहे थे, परंतु एक था जो परमेश्वर के वचन के साथ बना हुआ था और सिद्ध कर दिया कि वो ठीक था। मिकाया, ये निर्भर करता है कि ये परमेश्वर के वचन पर निर्भर करता है। कोई भी चीज जो वचन के विरुद्ध है गलत है, मृत्यु में आती है। परमेश्वर की बुद्धि के आगे कोई बुद्धि नहीं निकल सकती। वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, वो सोता है, केवल वही बुद्धि का स्रोत है। हम मनुष्य का वचन मूर्खता और झूठ है सिवाय परमेश्वर के, यदि ये परमेश्वर के विरोध में है। अब यदि व्यक्ति परमेश्वर का वचन कहता है तो फिर ये मनुष्य का वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। देखिए, ये मनुष्य की समझ नहीं है। शैतान आपसे बहुत प्रकार की प्रतिज्ञाएं करेगा, परंतु उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास उद्धार नहीं है। शैतान क्या है? कोई भी चीज वचन के विरोध में। उसके पास उद्धार नहीं है, उसके पास ज्योति नहीं है, उसका राज्य अंधकार में, उसके अंत में मृत्यु है। अंधकार और मृत्यु ही शैतान का राज्य है। भाई ब्रणम इसे फिर से दोहराएं। शैतान का राज्य क्या है? कोई भी चीज जो परमेश्वर के विरोध में है। अब ये छटाई है, परंतु ये समय छटाई का है, समझे? डाली का पेड़ का यदि ये फल लाने वाली है, छाटी जानी चाहिए। ये समय है। कोई भी चीज जो परमेश्वर के नियम के विरोध में है, परमेश्वर का वचन क्या परमेश्वर नहीं? ये क्या है? पाप क्या है? बिगाड़ी गई धार्मिकता। मृत्यु क्या है? जीवन में मिलावट। शैतान का राज्य क्या है? कोई भी चीज जो तय की गई कि परमेश्वर के वचन का स्थान ले, कोई भी चीज, कोई भी शिक्षा, एक वचन, बस एक वचन। आप हर बिंदु का विश्वास कर सकते हैं। हवा ने उस एक वचन के अलावा हर चीज का विश्वास किया, बस एक वचन जिस पर अविश्वास की आवश्यकता थी, और वही एक वचन काफी है आपके अविश्वास की आवश्यकता है। अब आइए इसको देखें। दिव्य संगति में टिके रहने का केवल एक ही मार्ग है, वचन में बने रहें। परमेश्वर ने कहा तू ये करेगा, तू ये नहीं करेगा, तू ये कर, तू ये मत कर, तू ये कर सकता है और ये, परंतु ये ना कर। एक छोटी सी आज्ञा का एक भाग जिसका उसने पालन नहीं किया और सारा मामला आरंभ हो गया। क्योंकि उसने ये किया, संसार में कभी कोई बालक भूखा हुआ? उस हर बच्चे को भूखा किया। मृत्यु का हर दुख, हर शोक, हर हृदयघात उसने वही किया। परमेश्वर के वचन का अविश्वास करना कितनी भयानक बात है। हर व्यक्ति का दर से कर रहाना, हर मृत्यु पर जो कभी हुई या कभी होगी, ये उसने वही किया। हर अवैध बालक उसने वही किया। हर बालक जन्मा विवाह बंधन के बाहर, हर पाप जो कभी किया गया वही उसका कारण हुई। हर वचन को उसने माना, परंतु यहाँ एक छोटा सा स्थान, वो कारण हुई। उसने उसे अनदेखा नहीं किया, उसे ये मालूम था, परंतु वो बस कुछ अच्छा करने के लिए बहकाई गई, क्योंकि उससे वर्ग के लोगों के लिए प्रतिज्ञा की गई थी, अच्छी बुद्धि, यदि वो ये करेगी अधिक जान जाएगी। हमारे सेवक अच्छे शिक्षित हैं, हमारे पास अच्छा वर्ग है, जो लोग परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं उनसे अच्छा लोगों का वर्ग इस संसार में नहीं है। ये सबसे अच्छा, केवल यही अच्छा वर्ग है जिसे परमेश्वर ध्यान करता है। थोड़ी देर में और हो सकता है हम इसे लेंगे। उसका राज्य मृत्यु को छोड़ और किसी चीज की प्रतिज्ञा नहीं करता। उसके पास बस यही है, वो मृत्यु का लिखने वाला है। वो झूठी प्रतिज्ञाएं करता है क्योंकि वो झूठ का पिता है। वो आपको जीवन नहीं दे सकता, वो आपको स्वर्ग नहीं दे सकता। उसके पास देने के लिए कोई स्वर्ग नहीं है। इस पर सोचें, एक वचन शैतान की प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर के एक वचन का अविश्वास करना या उसके यंत्र का। एक वचन आपको यात्रा में भेज देता है। ये इसी प्रकार आरंभ हुआ। और यदि परमेश्वर अपनी दया में जैसा कि वो है नरक के इस ढेर को पृथ्वी पर भेजेगा, छोटे बालक, सब प्रकार के दुख और भूखे लोग पृथ्वी पर मृत्यु का कारण बनी आरंभ में एक वचन के कारण, क्या वो इस सब को नहीं देख सका? वो इन सारे दुखों को हटाने को आगे बढ़ा, क्या वो इस सब को नहीं कर सका? तब यदि उसने एक वचन की क्षमा याचना नहीं की, तब ये जानते हुए कि ये परिणाम मिल निकलेगा, तो फिर वो एक वचन के लिए कितना और क्षमा नहीं करेगा। जब एक व्यक्ति इसका दुख अकेले ही उठाने जा रहा है जिसने अविश्वास किया, इस पर सोचें, ये भयानक बात है। अब जब आदम और हवा ने शैतान के इस झूठ को सुना, तब परमेश्वर की पवित्र छवि उन्हें छोड़ गई। परमेश्वर के साथ उनकी संगति टूट गई, उनकी परमेश्वर के साथ एकता की संगति टूट गई। उसी घड़ी जब उन्होंने शैतान के झूठ को सुना, इसने उनकी संगति को तोड़ दिया। और जिस घड़ी आप शैतान के झूठ को सुनते हैं, ये आपकी संगति को तोड़ देगा। वही घड़ी होगी कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो जाएंगे, जैसा स्त्री ने किया जब आप परमेश्वर के वचन को लेने में असफल होते हैं, जैसा कि वो है। अब देखिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि एक परमेश्वर है, और यदि परमेश्वर अपने वचन के साथ सही है और इतना स्थिर है कि वो लोगों का न्याय अपने वचन के द्वारा करेगा, तो उसे इस वचन को कहीं संभाल कर रखना है कि इसके द्वारा लोगों का न्याय करे। ये बाइबल यही है, आप इसे ना भूलें। ये बाइबल है जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों का न्याय करेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 में ये कहा गया है कि वो जो इसमें से एक शब्द भी निकालेगा या इसमें एक मिलाएगा। देखिए, ये नहीं कि मैं आराधनालय में जाता हूँ, मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ, क्योंकि नरक का हर शैतान उसका विश्वास करता है। उसमें से हर एक धर्मी है, हर कोई। परंतु इसने एक शब्द निकालकर अपनी संगति को वहीं तोड़ दिया। एक जंजीर अपने जोड़ पर से अधिक मजबूत नहीं होती। आप जहां परमेश्वर के वचन का अविश्वास करने में अधिक कमजोर हैं, वहीं जहां आप एक नया जोड़ लगाना चाहते हैं ताकि बाकी के साथ मजबूत हो जाएं। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपको बचाता है, तो आपको उसमें एक जोड़ना है। जो विश्वास करता है वो चंगा करता है। यदि आप विश्वास करते हैं वो था, आपको विश्वास करना चाहिए वो है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि वो था और भटकते हैं कि वो है या नहीं, वो जोड़ टूट जाएगा, आप नष्ट हो गए। देखिए, मेरा क्या मतलब है, ये निर्दय, ये कठोर है, परंतु ये सत्य है। आपको उसका विश्वास करना चाहिए, हर वचन का, हर बात जो उसने कही। अब आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, इन नामधारियों का क्या है? अब जरा सुनिए, यदि वे इस वचन के साथ हैं तो ठीक है, यदि वे इस वचन का इनकार करते हैं तो ये ठीक नहीं, तो फिर ये शैतान है, समझे? उस अमुक कलीसिया के विषय में क्या है? मैं उस कलीसिया के विषय में नहीं जानता, मैं तो केवल इस वचन के विषय में जानता हूँ। अब आप कैसे उन कलीसियाओं का विश्वास करने जा रहे हैं जबकि 900 कुछ भिन्न भिन्न कलीसियाएं हैं और हर एक कहता है हमारा नामधारी सही सत्य है। अब आप कहाँ जाएंगे? आपको किसी चीज में विश्वास करना है। आप ये कहते हैं मेरा विश्वास मेथोडिस्ट में है, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन में, लूथरन में, पेंटिकॉस्टल में, कैथोलिक में, ये जो भी है, आपका विश्वास संस्था में है और ये वचन के विरुद्ध है। आप वही चीज कर रहे हैं जो हवा ने किया। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक वही चीज करते हैं जो उसने किया। परमेश्वर के वचन को लेकर और इसे बना रहे हैं, भाई यहाँ अच्छे वर्ग के लोग आते हैं, ये बड़ा भवन है, वे बुद्धिमान लोग हैं, उनका इससे कोई मतलब नहीं। शैतान हवा से अधिक तेज था, स्त्री उस दृश्य में भी नहीं थी, परंतु उसको तो अधिक तेज होना ही नहीं था, उसे तो आज्ञाकारी होना था। हमें अधिक बुद्धिमान नहीं होना है। यीशु ने कहा कि इस संसार की संतानें यानी इस संसार का राज्य अधिक चतुर है। अंधकार की संतान ज्योति की संतान से हम लोग भेड़ के समान हैं। भेड़ तो स्वयं की अगुवाई नहीं कर सकती, उनके पास चरवाहा होना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चतुर हों, वो चाहता है कि उसकी समझ पर टिकें। आमीन। बस जहां वो अगुवाई करे। आमीन। आप चित्र देखते हैं, अपनी समझ का सहारा ना लेना, नीति वचन 5:3, अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसकी समझ पर निर्भर रहना। कोई मतलब नहीं कितना विरोधी लगे, कितनी बड़ी चमकीली रोशनी दिखे, ध्यान ना दें, उसकी समझ का सहारा लेना, जो उसने कहा वही सत्य है। अब एकता में संगति परमेश्वर और उसके बालकों के बीच टूट गई। जिस घड़ी उसने छोटे अनुच्छेद का अविश्वास किया, परमेश्वर का एक छोटा वचन, हर कोई जो समझा आमीन कहे। एक बाइबल नहीं, कहते हैं मैं सारी बाइबल का बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मैं आधी का विश्वास करता हूँ। उसे पूरे का विश्वास करना था, हर बिंदु का। अब केवल यही नहीं, परंतु पति और पत्नी की एकता टूट गई थी। मैं विश्वास नहीं करता बिना पति पत्नी और परमेश्वर के बीच की एकता के विवाह वैसे हो सकता है जैसा होना चाहिए। ये ठीक बात है। वे बालकों को संसार में जन्माएंगे, उन्हें अवैध बनाते हैं, उन्हें सिगरेट विस्की ताश उनके देखते हुए देते हैं, उनके सामने शराब पीते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे अपनी विवाह की वाचा के प्रति कितने ईमानदार हैं। ये कामुकता शारीरिक है, परंतु वहाँ एक आत्मा, पापी की आत्मा, पापा और मामा, कोई मतलब नहीं। बालकों के प्रति कितने ईमानदार हैं, वे गलत ही होंगे। यदि आप कहते हैं मैं पुरुषों और स्त्रियों को जानता हूँ जो अपने बालकों को ये नहीं सिखाते और मसीह नहीं थे, और वही बातें उनकी अगुवाई मसीह की ओर नहीं करती, ये बहुत गलत बात थी जो कभी वे इसके अलावा कर सकते थे कि मसीह की ओर उनकी अगुवाई ना करें। देखिए, इसके बिना आप सही एकता नहीं कर सकते। संगति टूट गई। तब जैसे ही आदम और हवा के बीच संगति टूट गई, और जैसे ही उनकी संगति उनके और परमेश्वर के बीच टूट गई, तो उनके बीच भी संगति टूट गई थी। सुनिए, किसी भी समय कलीसिया अपनी संगति तोड़ती है, स्वयं को संस्थागत कर लेती है, विश्वासियों की संगति टूट जाती है। हमें एक ही हृदय में होकर, एक ही विचार, एक मन होकर विश्वास करना है। इसी प्रकार से उन्होंने कभी अपनी एकता पेंतिकोस्तल के दिन से पहले की थी, एक हृदय, एक विचार और मेल। और जब आप कलीसिया को संस्थागत कर देते हैं, तो आप में बहुत प्रकार के मतभेद आ जाते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ बालक परमेश्वर में विश्वास करने जा रहे हैं, वे सही बात को पकड़ने जा रहे हैं, और दूसरे दूसरी ओर जाएंगे। इसलिए आप में संगति नहीं। जी हाँ, क्या उसकी सोच बदल गई? ओ हाँ, उसकी सोच बदल गई। उसकी संगति उसके पति के साथ ठीक नहीं थी, वे एक दूसरे पर मरने लगे, समझे? वास्तव में उसके विचार बदल गए। क्यों? उसके अंदर शैतान का जीवन आ गया। बिल्कुल ठीक, जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन का अविश्वास किया, उसने शैतान के जीवन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने उसकी शिक्षा को स्वीकार किया। मैं इसे यहाँ जबरदस्त मजबूत कर सकता हूँ, परंतु ये टेप पर है। कलीसिया, मैं निश्चित हूँ कि आप समझ गए। हवा ने परमेश्वर के वचन का अविश्वास किया, और इसने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया, क्योंकि तभी उसके अंदर शैतान का जीवन था। उसने उसके झूठ का विश्वास किया, कहा फल अच्छा है, और वो उसके साथ भाग लेगी। ये ठीक बात है, मैं इस पर नहीं रुकूंगा, जो भी है मैं इसे आने दूंगा, नहीं सकता। उस दिन कैलिफोर्निया में, मेरा मतलब एरिजोना में, मैं कलीसिया में सिखा रहा था। मैंने कभी भी प्रेरणा में कोई नहीं की कही जिसे कभी मुझे वापस लेना पड़े। कितने सारे सेवकगण मेरे पीछे रहे, शैतान के बीज के विषय में, सर्पवंश, वो स्त्री सेब खा रही थी, ओह वो अच्छा है। केन ने भी वैसे ही सोचा, वो खेत के फल ले आया, आप समझे, ये सेब नहीं था। उसने कैसे ये अनुभव किया कि वो नंगी थी? हम इसे देख चुके हैं। वास्तव में ये कामुकता का मामला था, निश्चय ही ये था उसने अनुभव किया कि वह नंगी थी और उसे सर्प से एक बालक था जो कि रेंगने वाला नहीं था। वो सारे पशुओं में धूर्त था, वो मनुष्य से अगली चीज था। मनुष्य केवल बंदर और चिंपैंजी को पा सकता है, चिंपैंजी और आदि आदि, परंतु वे इस कड़ी को नहीं ढूंढ सकते जो मनुष्य और पशु को जोड़ती है। वहाँ वो है। परमेश्वर ने उसे इतना श्रापित किया कि वो फिर वापस नहीं आ सकता। ये उसी पर है जो उसने बुरा कार्य किया। वही केवल वो बीज था जो मिल जाएगा। अब उस दिन खड़ा हुआ प्रचार कर रहा था और वहाँ कैथोलिक लोगों का झुंड था मेरी सभा में, और मैंने कहा, तुम कैथोलिक लोगों जो यीशु को कहते हो, बल्कि मरियम को परमेश्वर की माँ कहते हो, कैसे परमेश्वर के पास माँ हो सकती है जबकि वो अनंत है? उसके पास माँ नहीं हो सकती। यीशु का मरियम से कुछ नहीं था, परंतु वो एक अंडे सेने की मशीन थी जो उसे सामने लाई। भाई, उन्होंने सदा विश्वास किया और मुझे वर्षों पहले इसका विचार था, निष्कलंक गर्भाधान था, कि परमेश्वर ने उस पे छाया की और एक लहू कोशिका डाली। परंतु अंडा स्त्री से आता है, यदि अंडा स्त्री से आता है तो अंडे को लाने के लिए एक संवेदना होनी ही है जो गर्भाशय की नलकी से आए। देखिए, आप परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, आप उसे लैंगिक बखेड़ा बनाते हैं। परमेश्वर जिसने एक रक्त कोशिका की सृष्टि की, उसने अंडे को भी बनाया। डॉक्टर, वहाँ नर और मादा परागण होने के, ये ठीक बात है। तब यदि ये स्त्री अंडा उत्पन्न करती है तो फिर दाऊद ये कैसे कह सकता है कि मैं अपने पवित्र को सड़ने ना दूंगा, ना ही उसके प्राण को अधलोक में छोड़ूंगा। तब यदि स्त्री का अंडा मसीह में था तो फिर व्यक्ति का कोई भाग उसके पुनरुत्थान से संबंधित है, जबकि ये पूरी रीति से परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर ने क्यों व्यक्ति के लैंगिक भाग को जिला उठाया पुनरुत्थान में? क्यों? उसने उसकी देह को सड़ने के लिए नहीं छोड़ा, क्योंकि वो पवित्र था। और वो कैसे पवित्र हो सकता है यदि वो मरियम के साथ गर्भित हुआ और पराग मरियम से आया था, अंडा गर्भाशय की नलिका से आया। वहाँ कुछ संवेदना होनी ही है कि अंडे को नीचे लेकर आए, तब स्त्री होगी। भाई, आप कहते हैं कि हो सकता है अंडा वहीं रखा हो, संभव है, हो सकता है, परंतु ये यदि ऐसा है तो देखिए क्या हुआ। तो फिर वो कुल मिलाकर परमेश्वर नहीं था, वो परमेश्वर नहीं था, वो जैसे कि वो एक मनुष्य था। परंतु तब यदि ऐसा है तो स्त्री में कुछ था, और वो वास्तविक बीज जो मरियम से आया, जो कि उसकी माँ से आया और उसकी माँ से आया और उसकी माँ से, उसमें मनुष्य की मिलावट मनुष्य की इच्छा के साथ, ये नहीं हो सकता। नहीं श्रीमान, मैंने कहा वो केवल जैसा कि आप उकाब को लेते हैं और उसे अंडा देने दें और उसे मुर्गी के नीचे रख दें, मुर्गी बच्चे को अंडे से निकालेगी, वो केवल अंडे की मशीन, परंतु उसमें उकाब का जरा सा भी अंश नहीं, वो एक मुर्गी है। नहीं श्रीमान, मुर्गी थी। आप एक पिल्ले को चिड़िया के अंडे के ऊपर बांध दें और वो चिड़िया को निकालेगा, वो पिल्ला होगा। ये शरीर की गर्मी जिसने अंडे से बच्चा निकाला, और यीशु के साथ भी यही बात थी। मरियम केवल एक अंडा सेने वाली मशीन थी, परमेश्वर ने उसे प्रयोग किया जैसे वो किसी और स्त्री का प्रयोग करता। वो कुंवारी थी, उसके पास बालक नहीं थे, वो एक कुंवारी के घर में आया, परंतु परमेश्वर ने दोनों अंडे और जीवांश को, दोनों की सृष्टि की, इसलिए वो निष्कलंक गर्भाधान था। जब मैं बाहर आया, निसंदेह भाई लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपने एक गलती की है, अब हमने आपको पकड़ लिया। मैंने कहा, ठीक है, यही जो मैं चाहता हूँ कि पकड़ा जाऊँ। और कहा, आपने ये कहकर गलती कर दी जब आपने सर्वंश को प्रचारा। अब आप कहते हैं कि अंडा संबंधित था, परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की अंडे की। क्या हुआ? हम यहाँ पर ये पाते हैं कि उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर ने मरियम से कहा, मैं तेरे वंश और सर्प वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। मैंने सोचा, ओ प्रभु, मैंने कभी भी अपने जीवन में प्रेरणा में कुछ भी प्रचार नहीं किया कि मुझे वापस लेना पड़े, क्योंकि मैं अपनी समझ पर निर्भर नहीं करता। यदि मेरी समझ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो मेरी समझ गलत है। मुझे परमेश्वर का वचन लेना ही है। यदि ये नहीं है तो छोड़ दो, ये सही नहीं है, परंतु अब इसे तोड़ दो, यही करना है। अपने हृदय में मैंने कहा, स्वर्गीय पिता आप मेरी सहायता करें, मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या करना है। व्यक्ति के पास पवित्र वचन है, वो अपनी उंगली वहाँ रख रहा है, मैं तेरे वंश और सर्प वंश के में बैर उत्पन्न करूँगा। अब ये यहाँ पर है, पवित्र आत्मा मंडराया। मैं विश्वास करता हूँ वही जो मरियम पर छाया कर सकता है, जो सृष्टि कर सकता है, वो उनके मुंह में भी वचन डाल सकता है। मैं प्रतिदिन उस पर निर्भर करता हूँ और ये सदा उसका वचन है। वो नहीं कह सकता अपने ही वचन के विरुद्ध। तब यदि आप कहते हैं आप अभिषेक हैं और परमेश्वर के सत्य के विरोध में प्रचार करते हैं, तो फिर ये पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आप पर छाया करता है वो एक ही चीज लाता है, क्योंकि ये वचन है। सुनिए क्या घटित हुआ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। स्त्री के पास अंडा नहीं है, उसके पास वंश नहीं है। अब उसने कहा अंडा नहीं, उसने कहा तेरा वंश, और उसके पास बीज नहीं। बीज बनाने के लिए एक होना है। क्या ये ठीक बात है डॉक्टर? होना है। यदि आपके पास सारा का सारा गूदा है और उसमें बीज नहीं है और उसे बाहर बो दे, वो कभी भी नहीं उगेगा, वहाँ पड़े पड़े सड़ जाएगा, और आप बिना गूदे के जीवन को नहीं बो सकते। इसलिए आप देखिए, सारी बात एक होने की है। अब मैं आपको मसीह और कलीसिया के विषय में बताने का यत्न कर रहा हूँ। एकता है। देखिए, यदि स्त्री स्वयं में एक बीज है तो फिर उसे नर की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं ही अपना बालक धारण कर सकती है, परंतु वो नहीं कर सकती। वो तब तक बालक धारण नहीं कर सकती जब तक वो नर के साथ ना हो, क्योंकि ये दो एक को साथ लेता है कि बीज को बनाए। क्या ये ठीक बात है? एक बीज बो दो, उसमें जीवन ना हो, देखिए क्या होगा। जैसे कि उनकी एक कहावत है कि इस स्त्री ने कुत्तों को जन्म दिया, देखिए वे जी नहीं सकते, ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि देखिए जन्म कोशिका मिलेंगे नहीं। अब इस पर ध्यान दें, स्त्री बीज नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि मैं तेरे वंश और सर्प के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। उसे ये बता रहा है कि वो स्वयं ये करने जा रहा है कि उसे एक बीज देगा, लैंगिक समागम के द्वारा नहीं, वो स्त्री में बीज की सृष्टि करने जा रहा है। आप कहते हैं क्या वो उसका बीज होगा? जी हाँ, वो मरियम से होगा। तब जब उसने उसको देने के बाद, ये मेरी आँख है, वो ये मुझे देता है, ये मेरा हाथ है, उसने ये मुझे दिया है, ये मेरी आवाज है, परंतु ये उसने मुझे दी, समझे? वो बीज जो था मरियम, उसका मरियम से कोई लेना देना नहीं था, ये वो जो परमेश्वर ने स्वयं किया। इसलिए वो बीज जो उसके अंदर था वो नियम विरुद्ध का मिलन था, जो कि मृत्यु था। वो पहले ही सर्प के बीज से गर्भित थी, क्योंकि वो संग रही थी, और पलट कर उसने ये कहा, स्वयं स्त्री ने, सर्प ने मुझे बहका दिया, ये ठीक बात है, और तुरंत केन आया। वो हम जानते हैं कि उसने कहा कि उसे परमेश्वर की ओर से बालक मिला। निश्चय ही हर बालक जो अवैध जन्म लेता है और कुछ भी, वो परमेश्वर के विधान से आता है, केवल वही है जो जीवन बना सकता है। निश्चय ये ठीक बात है। देखिए, वो पहले ही माँ होने को तैयार थी, और ये कभी नहीं, इसने केवल क्या किया, सर्प वंश की बातों को स्पष्ट कर दिया। वो बीज जो अब आप में है, ये गर्भाधान के द्वारा है, आपका अवैधानिक व्यवहार मेरे वचन के विरुद्ध, यहाँ इन बातों के साथ, और अब आपको सर्प का वंश मिल गया। परंतु मैं आपको एक बीज दूंगा निष्कलंक गर्भाधान के द्वारा, और उसका वंश सर्प के सर को कुचलेगा और उसका सिर इड़ी को कुचलेगा। आमीन। परमेश्वर इसे ले, यदि ये उसका वचन है वो इसे घटित करेगा। यही कारण है आपको परमेश्वर के साथ एक होना है। यही कारण है कि पत्रस ने पेंतिकुस्त के दिन कहा, यीशु के कहने के बाद, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पत्रस घूमा और बोला, उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दो, क्योंकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। ये समझे, ये एकता को लेता है। पौलुस ने पत्रस को कभी नहीं देखा, परंतु वही पवित्र आत्मा उसी एकता में था। महिमा हो, क्योंकि कारण उसने वही बात कही, क्या तुमने जब से विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? उसने कहा हम नहीं जानते कि ये क्या होता है। कहा तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ? कहा यूहन्ना का। कहा तुम्हें फिर से बपतिस्मा लेना होगा यीशु मसीह के नाम में, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ये क्या था? एकता। वही बात कह रहे हैं जो परमेश्वर कहता है, और यही स्वीकार करना है। कन्फेस, इसका अर्थ वही बात कहना, और वो हमारे पाप स्वीकार का महायाजक है, उसी का पालन करना जो उसने कहा। हम कहते हैं कि ये सत्य है, और वो इसका पालन करता है। ओ प्रभु, आप वही हैं, वही गर्भाधान है। अब ध्यान दें कैसे वो स्त्री की संयुक्तता और उसके पति के बीच टूट गई थी। देखिए, तुरंत ही जैसे ही परमेश्वर ने कहा आदम तू ये कैसे कर सकेगा, अपनी पत्नी के बदले में कैसे ले रहा है, उसने ये अपनी पत्नी की ओर बढ़ा दिया। जो स्त्री तूने मुझे दी, एकता टूट गई, समझे? उस स्त्री ने क्या किया? बजाय अपने पति से प्रेम करने और सत्य बताना, उसने झूठ बोला। उसे कहना चाहिए था वो निर्दोष है, मैंने उसे दिया। आमीन। बाइबल ने कहा स्त्री ने अपने पति को दिया। उसे ये कहना चाहिए था कि पुरुष निर्दोष है, मैंने उसे दिया, और फिर उसने खाया। परंतु ये मैं ही थी जिसने ये उसे दिया, बजाय इसके उसने ये सर्प की ओर कर दिया, बचकर निकल जाना। और आज भी वे यही करने का यत्न करते हैं। देखिए, पति पत्नी एकता टूट गई, पति और पत्नी उनके बीच संगति टूट गई थी, उनकी एकता टूट गई थी, उनके और परमेश्वर के बीच की एकता टूट गई थी, सारी चीज बिगड़ गई थी। क्यों? क्योंकि एक वचन का अविश्वास किया गया। ओ भाई, जी हाँ, उसे सच बता देना चाहिए था। उसके और उसके पति की एकता चली गई थी, और उनके बीच और परमेश्वर के बीच की एकता समाप्त हो गई थी। और हर कलीसिया जो परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से नहीं लेती, वही बात घटित होती है। मैं इसे प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते? उसके पहले नोट पर ध्यान दें, केन पर, एक हत्यारा, एक झूठ, एक झूठा, एक धोखेबाज, द्वेष रखना भाई से, बैर रखना। उसके भाई ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और परमेश्वर ने उसका छुटकारा भेंट का बलिदान करके किया, और उनके लिए बलिदान किया। अब उसकी अज्ञानता पर ध्यान करें, शैतान की, बदले में कुछ करने का यत्न किया। परमेश्वर, बाइबल ने कहा जाकर उसने खाल के कपड़े बनाए, खाल लेने के लिए कुछ मारा गया। आदम ने अपने लिए कपड़े बनाने का यत्न किया अंजीर के पत्तों से। ये नहीं चलेगा, वनस्पति का जीवन, चलते फिरते जीवन को मरना था, इसलिए उसने जीवन का छोटा रूप मारा, और इसमें कह रहा था किसी दिन मेरा अपना जीवन मैं तुम्हारे लिए दूंगा, वो वास्तविक जीवन इस एकता में फिर वापस डालूंगा। अब हम इसे कुछ मिनटों में लेंगे, परमेश्वर ने चाहा तो। देखिए, यहाँ एक मेमने का जीवन है। अब आप इसे अपने चारों ओर लगाकर अपना नंगापन ढांप लें। आपको सेब नहीं खाना चाहिए, निरर्थक। देखा, इस खाल को चारों ओर लपेट लो। उसे किसी चीज को घात करना ही था, और शैतान के पुत्र उस मार्ग से नहीं आते जिससे उसने ये चाहा, उसने किया। जो भी है, आप ये कहना चाहते हैं, परंतु ये शैतान का पुत्र है, क्योंकि आदम की शुद्धता जो परमेश्वर के लिए थी, वो उस चीज को ना ला सकी। फिर ध्यान दें, शैतान का पुत्र प्रायश्चित करने का यत्न कर रहा है, उसी चीज के साथ वापस आया जो अधिकांश लोग आज कहते हैं, सेब का ढेर और देश के फल, प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाया, एक प्रतिकारक। और धर्मी हाबिल ने क्या किया? वो जान गया कि वो ऐसी चीज नहीं थी जैसे सेब का खाना, वो अपनी माता और पिता का लहू था, आदम का जीवन, इसलिए वो एक मेमना लाया जैसे परमेश्वर ने किया था। हालेलुया, उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया था, और केन उससे द्वेष रखता था। वही बात आज है, उसी बलिदान के लहू में आओ, उस परमेश्वर के वचन में ठीक वैसे जो ये कहता है उसके साथ टिके रहें। बहुत सारे उस लहू के बलिदान का विश्वास करेंगे, परंतु वचन में कुछ और कहते हैं, वे कहते हैं ओ नहीं, मैं इसका विश्वास नहीं करता, ओ ये तो किसी और दिन के लिए है, वही पुराना शैतान, वही पुरानी चाल। जब तक हम इसे देखें, प्रतीक्षा करें, ध्यान दें, वो ठीक उसी रास्ते से आता है। परंतु केन अपनी मूर्खता के मार्ग में, इतना मूर्ख नहीं परंतु अपनी चालाकी के मार्गों में धोखा खा गया, और फल लेकर के आया, आदम ने बनाए रखा, यानी हाबिल ने परमेश्वर का वचन बनाए रखा, वो मेमना लेकर आया। परमेश्वर ने कहा यह ठीक बात है, आदम तूने पालन किया है, यानी हाबिल तूने मेरे वचन का पालन किया। केन तुझे मालूम था कि ये नहीं है, मैंने अंजीर की पत्तियां कहाँ ली जैसे तेरे पिता ने करने का यत्न किया। तूने अंजीरों या अंगूरों या सेब या जो कुछ भी था तू उसका ढेर यहाँ लेकर आया और अब तेरे पिता ने पेड़ से पत्तियां तोड़ी प्राश्चित करने का यत्न किया और यहाँ तू पेड़ से फल लाने का यत्न करता है। ये वो नहीं था, ये जीवन से लहू था। ओ परमेश्वर इसे लेकर आया, कहाँ ये यहाँ है। और हाबिल ने ठीक वाला चढ़ाया, तब उसका भाई उससे द्वेष रखने लगा। देखिए उसने क्या किया, उसने अपने भाई को मार डाला। परमेश्वर ने दूसरा उठाया, जैसे मृत्यु गाड़ा जाना और मसीह का पुनरुत्थान। ध्यान दें, तब परमेश्वर ने उसने आदम और हवा को क्या बताया, जाओ पृथ्वी पर फूलो फलो और बढ़ जाओ, मानव जाति को सारी पृथ्वी में फैला दो ताकि वो उनसे व्यक्तिगत रीति पर व्यवहार करे। जब तक वो उन्हें वापस एक साथ ना लाए, लोगों से व्यक्तिगत व्यवहार करें प्रत्येक व्यक्ति से। परंतु उन्होंने इस प्रकार से ना चाहा, इस प्रकाशन पर ना चूकें। परमेश्वर ऐसा होने दे आप वैसा ही देख सकें जैसा मैं इसे देख रहा हूँ। देखिए वो नहीं था, परमेश्वर व्यक्ति से झुंड में व्यवहार नहीं करता, परमेश्वर आपके साथ संस्था में व्यवहार नहीं करता, वो आपके साथ व्यक्तिगत व्यवहार करता है। एक व्यक्ति, हमने व्यक्तिगत पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया, मिलकर हमने देह में बपतिस्मा लिया। जब हमारा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ, परमेश्वर प्रत्येक से व्यवहार कर रहा है, ये उसका उद्देश्य है। उन्हें पृथ्वी पर फैला दिया ताकि उनके साथ व्यक्तिगत रीति से व्यवहार कर सके। परंतु देखिए बजाय इसके क्या हुआ, परमेश्वर को केन के लोगों को सेत के लोगों से अलग करना पड़ा। उसने केन को अलग भेजा, उसने उनको अलग कर दिया ताकि वो अपनी कलीसिया के साथ व्यवहार कर सके। देखिए केन अलग हो गया था। अब देखिए परमेश्वर ने हवा के दुष्ट केन से आदम के पवित्र संत को अलग किया। ओ क्या उसने ये किया, उस अवैधानिक कार्य से। ये स्त्री किसी और के साथ रही थी और बालक को जन्म दिया। परमेश्वर ने उस बालक को और उसका वंश, जो इस धर्मी से पवित्र पुरुष, उसके बालक को अलग किया। आज भी यही बात है, अलग हो रहे हैं, अलग हो गए। उन्हें ढूंढें, वे एकता में नहीं थे। क्या रात दिन के साथ मिल सकता है, क्या विश्वासी नास्तिक के साथ मिल सकता है, क्या एक मनुष्य जो परमेश्वर के सारे वचन का विश्वास करता है उनसे मिल सकता है जो परमेश्वर के एक भाग पर विश्वास करते हो। परमेश्वर अलग हुओं को चाहता है। अब केन हवा का पुत्र था, उसने कहा मुझे एक पुत्र मिला है, परंतु शेत आदम का पुत्र था और परमेश्वर ने उन्हें अलग किया क्योंकि वो नहीं सका, क्यों वे एक दूसरे को भ्रष्ट कर देंगे। केन के दुष्ट बालक शेत के अच्छे बालकों को खराब कर देंगे, ये ठीक बात है। अब ध्यान दें, वही पुराना शैतान जो परमेश्वर के एक वचन पर हवा से अविश्वास कराने का कारण हुआ और उन्हें बताया कि स्वयं को एक दूसरे से अलग कर ले और एक दूसरे से भिन्न रहें, उनमें से प्रत्येक वही शैतान उनके बीच में आ गया और उन्हें फिर एक साथ ले आया। क्या आप इसे समझे, यदि आप समझ गए तो आमीन कहें। वो उन्हें फिर से मिलाकर उस झूठी एकता में, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध क्या घटित हुआ, उसने ये कैसे किया। उत्पत्ति में बाइबल ने कहा परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। परमेश्वर के पुत्र शेत के बालक मनुष्य की पुत्रियों को देखा, केन के बालक, वे कितने सुंदर थे और उन्होंने क्या किया, वे उन पर मोहित हो गए और उन्होंने अपने आप को उनके साथ फिर से मिला लिया, उस सुंदरता के कारण कि वे देखने में सुंदर थीं। आज वैसा ही है भाइयों, आप यहीं पर हैं, आप पेंटिकॉस्टल के निर्बल परमेश्वर जिसने आपको अलग किया और आपको बाहर भेजा कि अंतर नामधारी हो जाएं। आप पेंटिकॉस्टल को नामधारी नहीं कर सकते, आपको बाहर भेजा कि उसके लोग हो जाएं। परंतु तुमने बड़े बड़े गिरजे देखे और धर्म विद्यालय, तुमने अपने लिए बड़े बड़े विद्यालय और चीजें ले ली और तुमने क्या किया, तुमने परमेश्वर के लोगों को फिर से संस्था में मिला दिया जो कि कैथोलिकवाद की नींव है। सुंदर बड़े बड़े आराधनालय, सुंदर वस्त्रों वाले लोग, नगर का मेयर और वे सब बाकी आए अच्छे वस्त्र, सबसे अधिक शिक्षित, ऊंचे धर्म विद्यालय, वे जानते हैं कि उन स्थानों में कैसे जाना चाहिए जहां बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग हों, और परंतु अपने स्थान में ठीक, ये क्या है? आप उन चीजों को देख रहे हैं जिन्हें परमेश्वर ने दोषी ठहराया। और तुमने पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं को ले लिया, परमेश्वर इसे टेप पर होने दें, और संस्था के साथ एक हो गए। परमेश्वर ने यह कभी नहीं चाहा, वो इसे अलग ही चाहता था। संसार के साथ कभी भी मेल नहीं किया। वही पुराना शैतान जो हवा के लिए परमेश्वर के वचन पर अविश्वास का कारण बना और उसके साथ दुष्टता की, फिर से वापस लौटकर आया, शेत के बालकों को लिया और उन्हें केन की स्त्रियों को देखने दिया, और वे फिर से एक हो गए। और वे नास्तिक नहीं थे, वे साम्यवादी नहीं थे, नहीं नहीं, वे विश्वासी थे। उन्होंने कहा अब संभव है कि प्रभु कुछ करे, या ओ ये ऐसे है। उन्होंने सोचा कि जो वे कर रहे हैं वो सही था, और परमेश्वर ने क्या किया? सारी चीजों को ही मिटा दिया, सारे मामले को मिटाना ही था। उस झूठी एकता में उसे बाढ़ भेजनी ही थी और सारे झुंड को नष्ट कर दिया। उस झूठी एकता पर न्याय आ गया, अदन पर न्याय आया उस झूठी एकता के कारण। अब क्या सर्प का वंश है? आपके लिए लज्जा की बात है। एक झूठी एकता पृथ्वी पर न्याय को लेकर आई, अदन में हवा और आदम पर, और एक झूठी एकता परमेश्वर की न्याय की बाढ़ पृथ्वी पर लाई, क्योंकि उन केन की लड़कियों ने परमेश्वर के पुत्रों के साथ प्रेम खिलवाड़ किया और वे इसके लिए गिरे और फिर से मिल गए। आप उसी जगह हैं, झूठी एकता, कुछ नहीं हो सका। परमेश्वर ने क्या किया? उसने सब कुछ नष्ट कर दिया सिवाय मूल्यवान नूह और उसका परिवार। वो एक साथ हो गए, और फिर उसके बाद नूह की मृत्यु के बाद, और नूह का आत्मिक परिवार, पहली बात आप जानते हैं, मनुष्य के बालक फिर से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अब हम नास्तिक नहीं हैं, हम सब परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को लिया जो अगुआ था, कोई बड़ा आर्च बिशप निमरोद नाम का, और उन्होंने एक मीनार बनाई। वे नास्तिक नहीं थे, उन्होंने विश्वास किया कि एक स्वर्ग है, एक नरक है, ये विश्वास किया, उन्होंने न्याय में विश्वास किया। परंतु परमेश्वर के बालक मनुष्य की पुत्री के साथ फिर से, और उन्होंने एक झूठी एकता की और महान बड़े आराधनालय बनाए और एक बड़ी महान संस्था और बाबुल के दूसरे बड़े बड़े स्थान इसे कर देना होता था। और उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए हम बुद्धिमान हैं। उन्होंने ये बुद्धि कहाँ से पाई? शैतान से। ये बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने ये शैतान से पाई, जैसे जैसे हवा ने किया, इसे शैतान से पाया था। इसलिए उन्होंने कहा हम स्वयं एक संस्था बनाएंगे, हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। हम एक छोटी सी सीढ़ी बनाएंगे, हम ऊपर दौड़ जाएंगे और गाएंगे और स्वर्गदूतों के साथ आनंद करेंगे, और वापस नीचे आ जाएंगे और जैसा चाहेंगे जिएंगे। वो शैतान अभी भी जीवित है, समझे? ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध था, उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने बाबुल की मीनार बनाई, फिर झूठ। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उलझन में डाल दिया और उन्हें अलग कर दिया, और उसने भले बूढ़े धर्मी अब्राहम को भेजा, कहा मैं बस तुझे लूंगा और तुझ में से एक राष्ट्र बनाऊंगा। परमेश्वर ने उन्हें अलग कर दिया, उनके बीच से बाहर आ गया। अब्राहम ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, और परमेश्वर ने उसे कभी भी आशीषित नहीं किया जब तक उन्होंने सब कुछ पीछे न छोड़ दिया। लूत अंतिम था। अब्राहम बाहर आ, अपने आप को उन अविश्वासियों से अलग कर, और मैं तुझे लेने जा रहा हूँ और तुझ में से एक राष्ट्र बनाऊंगा। मैं ऐसे लोग बनाऊंगा जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। मैं उन्हें एक और मौका देने जा रहा हूँ। भला बूढ़ा अब्राहम एक अपरिचित राष्ट्र में जाकर परदेशी हो गया। यही जो हर अब्राहम करता है, अपरिचित राष्ट्र में जाकर परदेशी। क्या उस प्रतिज्ञा का विश्वास कर रहा है जो असंभव था? मनुष्य की रीति पे बोल रहा हूँ। आप उन आधुनिक केन के डॉक्टरों के लिए क्या सोचते हैं? उन दिनों में क्या कहा होगा, ओ एक बूढ़ा मनुष्य 100 वर्ष का अपनी पत्नी से जो 90 की है उससे बालक पाने जा रहा है, ओ क्या ही विचित्र बात है। परंतु अब्राहम ने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया और इसके विरोध में कोई भी चीज उसने कहा जैसे कि वो है नहीं। ये सारे झूठे बपतिस्मे, झूठी संवेदनाएं, झूठी चीजें जो आज चल रही हैं, कहते हैं ये वो नहीं है। परमेश्वर के वचन का विश्वास करें और करते चले जाएं। ये केवल ठोकर का कारण कि आपको वास्तविकता से अलग करे। ये ठीक बात है बालको, आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने वचन को बनाए रखता है। मैं चिंता नहीं करता कि शैतान कितनी झूठी बातें सामने लाए, परमेश्वर का वचन फिर भी सच्चा है और वो इसे बनाए रखता है। अब्राहम ने किसी भी विरोध की बात का गलत कहा। रोमियो 4 अध्याय यदि आप इसे लिख रहे हैं, अब्राहम ने किसी भी चीज को जो परमेश्वर के वचन के विरोध में थी, यद्यपि वो नहीं थी, ये ठीक बात है, उसने परमेश्वर में विश्वास किया, मजबूत था। कोई मतलब नहीं कि वो शरीर में कितना दुर्बल था, ये कितना असंभव प्रतीत होता है कि ये घटित होने नहीं जा रहा था। अब्राहम इसका विश्वास करता रहा। अब उसे वेदी पर नहीं जाना था और कहता कि यदि अब ये नहीं आता है मैं करने जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि विश्वास करूँ कि नहीं करूँ। उसके आने के पहले अब्राहम ने 25 वर्ष विश्वास किया, परंतु वो वहाँ था, आया, वो ये सदा करता रहा। अब्राहम से इजहाक आया, इजहाक याकूब आया, याकूब से पूर्वज आए, पूर्वजों से मिस्र में गए, मिस्र में एक राष्ट्र बन गए। तब जब उसका राष्ट्र वहाँ बढ़ गया, उसकी उपलब्धि, उसने क्या किया, परमेश्वर ने उन्हें फिर से अलग कर दिया। अविश्वास और विश्वास एक साथ नहीं चल सकते, नहीं श्रीमान। उसने उन्हें फिर अलग कर दिया अपनों के लिए, उसने निश्चित होने के लिए उनके साथ क्या किया कि उनकी सही अगुवाई हुई। अब ध्यान से सुने, अब हमारे पास और अधिक समय नहीं है, हो सकता है और 15 मिनट। उनकी अगुवाई अपने समीप की, ध्यान दें, उसने एक राष्ट्र को उठाकर खड़ा किया, उन्हें एक शिक्षक के अधीन रखा, वे पीटे गए, रोए, चिल्लाए और चलता रहा, परंतु परमेश्वर नीचे देख रहा था। उसने हर प्रतिज्ञा को स्मरण किया जो अब्राहम को दी थी। एक दिन उसने सोचा, उसने उनके साथ क्या किया, उसने क्या किया जब उसने उन्हें अलग किया, उसने उन्हें एक व्यवस्था दी और उन्हें एक भविष्य तख्ता दिया, उसने उन्हें एक अग्नि स्तंभ दिया, उसने क्या किया, ओ परमेश्वर, उसने अपनी कलीसिया व्यवस्थित की, एक अग्नि स्तंभ, आत्मा की उनकी अगुवाई करे, एक भविष्य तख्ता जो उसके वचन की सच्चाई उन्हें बताएगा, तब वे यात्रा के लिए तैयार हो गए। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं, वे जंगल में चले गए, चिन्ह और आश्चर्यकर्म हो रहे थे, लाल सागर खुल गया, नरक के संकट फिरौन पर आए, ओ अग्नि स्तंभ उनके आगे आगे चल रहा था, आमीन, रात में और दिन में उनकी अगुवाई कर रहा था, हालेलुया। एक भविष्य तख्ता उस वचन के प्रति सच्चा वहाँ खड़ा हुआ, उन्हें एक पंक्ति में रख रहा था, आमीन। तब वो अपने बालकों को लेने के लिए तैयार था, वो तब पहली बार था जब कभी वे कलीसिया कहलाए। ये एक नमूना था जो कि आज वो अंत के दिनों में करने जा रहा है। एक मिनट में हम इसे फिर से लेंगे। उसने उन्हें बाहर बुलाया, उन्हें एक व्यवस्था दी, अपना वचन उन्हें दिया और उन्हें एक भविष्य तख्ता दिया, उसने उन्हें एक चिन्ह दिया और उसने उन्हें जंगल में भेज दिया और उन्हें बाकी संसार से अलग कर दिया। उन्होंने क्या किया, मोआब की सुंदर स्त्रियां देखी, एक गुनगुनी कलीसिया, देवी देवताओं के साथ और हर चीज। उन्होंने क्या किया, उनके लिए गए और उनमें विवाह किया। ये ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। मैं उन सुंदर छोटी मोआबी स्त्रियों की कल्पना करता हूँ, वास्तव में सुंदर थीं। मेरे पास एक भविष्यवाणी है जो घर पे रखी है, किसी दिन मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। आप आश्चर्य करते हैं कि मैं क्यों स्त्रियों को झाड़ लगाता हूँ जिस तरह मैं करता हूँ। 30 वर्ष पहले मुझे यहोवा यूं कहता है मिला, 30 वर्ष पहले जब मैंने सेवकाई में प्रवेश किया, उसने मुझे बताया स्त्रियों की शक्ति इतनी आचरणहीन हो जाएगी और अंत के दिनों में लांछित हो जाएंगी कि वे पृथ्वी पर सबसे अधिक अशुद्ध चीज होगी। ठीक बात है, उसने ये आदि में ही आरंभ कर दिया था और शैतान ने उसे अंत में प्रयोग किया और देखिए कि क्या हो रहा है, वर्षों में से होते देखिए, कहा वो निरंतर स्वयं को उघाड़ती चली जाएगी और कहा और केवल एक छोटा झुंड होगा चुनौतियों का जो पहले से ही ठहराए गए हैं, वे बच निकलेंगे। जब वो दर्शन आया मैं चिंतित हो गया, मैंने सोचा स्त्री, मैंने बाइबल में यशाया निकाला, मैं विश्वास करता हूँ 5वां अध्याय और इसमें कहा वो डाली जो बच गई सय्योन की पुत्रियाँ उस दिन में प्रभु के लिए सुंदर होंगी। एक दिन एक महिला ने मुझे प्रश्न लिख भेजा, उसने कहा भाई ब्रणम क्या नहीं ये पुरुष कोई सेवक था, हो सकता है यहाँ खड़ा हो इस प्रातः वो ओहियो से था। और उसने कहा हम भी आपसे यही बात कहना चाहते हैं, परंतु हमने आपके ट्यूब पर कुछ पाया है जो कि ठीक नहीं है। इसलिए बिली वो पत्र मेरे पास लाया, कहा आपके टेपों पर कुछ है, कहते हैं ये परमेश्वर के वचन से बहुत ही विरोधाभास है भाई ब्रैनम, और हम कुछ कहना चाहते हैं। कहा मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, ये कि पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और ये सिर ढांपने के विषय में कहता है स्त्रियों के और पुरुष को नहीं ढांपना चाहिए। कहा हम विश्वास करते हैं कि स्त्रियों को कलीसिया में टोपी पहननी चाहिए और पुरुषों को कलीसिया में टोपी उतार देनी चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि ये सिर की ओढ़नी है और आदि आदि। और कहा दूसरा प्रश्न ये कि लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु के दूत ने सारी बातें आपसे की हैं, हर वचन जो आप बोलते हैं प्रभु के दूत से है। और भाई बहनों इस प्रकार की चीजें, इससे लड़ना बहुत ही कठिन है मेरी कलीसिया में। कहा हम भी यही बात कहना चाहते हैं। अब भाई बहनों क्या आप विश्वास नहीं करते कि आप वहाँ थोड़ी गलती पर थे? मैंने अपने मूल्यवान भाई को वापस लिखा, मैं गलती पर नहीं हूँ। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय उसमें कहा है एक स्त्री का सिर ढका हुआ होना चाहिए, और क्यों? फिर 15वें पद में कहा उसके लंबे बाल उसे ओढ़ने के लिए दिए गए हैं, ना कि टोपी। उस कैथोलिक आत्मा का शासन कलीसिया में कभी भी लंबे समय से रहा है, उसके लंबे बाल उसकी ओढ़नी है, क्या प्रकृति स्वयं में नहीं? मैंने कहा देखिए, फिर प्रश्न वापस आता है। किसी ने मुझसे कुछ समय पहले पूछा, मैं इसकी व्याख्या दूंगा जब मैं इस पर आऊंगा। उसने कहा कि बाइबल ने कहा कि उसके बाल दूतों के कारण लंबे होने चाहिए, दूतों का स्त्री के साथ क्या वास्ता है? मैंने कहा दूत क्या है? ये एक संदेशवाहक है। पौलुस क्या कह रहा है? यदि एक सच्चा संदेशवाहक परमेश्वर के पास से एक दूत आता है, अच्छा हो कि तुम्हारे बाल लंबे हो, वो इन चीजों को दोषी ठहराएगा। ये ठीक बात है, कितने समझ गए, जानते हैं कि एक दूत संदेशवाहक है? बिल्कुल ठीक, एक संदेशवाहक जो परमेश्वर के पास से भेजा गया, इसे दोषी ठहराएगा। कहा अच्छा हो कि आपके बाल लंबे हों दूतों के कारण, वे संदेशवाहक जो परमेश्वर की ओर से आए हैं इस चीज को दोषी ठहराएंगे। अब वास्तव में क्योंकि परमेश्वर की ओर से वास्तविक दूत एक दूत जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है और उसका वचन असफल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ठीक बात है। संत पौलुस ने वहाँ कहा कि यदि स्वर्ग से भी कोई दूत आकर कुछ सिखाए तो वो श्रापित हो, ये ठीक बात है। अब हम पाते हैं कि ये सही है, उसके बाल लंबे होने चाहिए, यही उसकी ओढ़नी है। परंतु मैं कल्पना करता हूँ कि मुआबी स्त्रियाँ बहुत सुंदर थी, हो सकता है वे आज की आधुनिक जिजाबेल के समान होती हों, परंतु जो भी है सारी स्त्रियाँ नहीं। मैं सोचता हूँ कि स्त्री जो कि एक वास्तविक रत्न है, वास्तविक महिला के लिए परमेश्वर की महिमा हो, आप परमेश्वर की दासियां हो, परंतु एक सच्ची वास्तविक महिला वास्तविक पुरुष जैसी, शैतान चाहे जो भी बात कहे वो परमेश्वर के वचन का पालन करेगा या कोई भी गलत बात। और कहते हैं हमारे पास्टर ने कहा है ऐसा करना ठीक है, मैं चिंता नहीं करता आपके पास्टर ने क्या कहा, यदि ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है उसका वचन झूठा और परमेश्वर के वचन का पालन करें। कौन सा नामधारी है, चिंता नहीं, ये वो क्या कहा, यदि इस विषय में कहने के लिए उसके पास है तो उसे बताएं कि परमेश्वर के वचन में देखे, ये बिल्कुल ठीक बात है। वो कैसे हम और आगे बढ़कर देख सकते हैं, और देखे परमेश्वर उन्हें अलग कर रहा है। अब हमें एक मिनट के लिए यहाँ रुकना ही है, मेरे पास यहाँ कुछ पवित्र लेख हैं, मैं इन्हें छोड़ देना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी करके अंत में आऊँ। तब जब क्या हुआ, जब उसने वहाँ स्थान लिया, जब वे मुआबी स्त्रियाँ, परमेश्वर को उन्हें फिर से अलग करना था, उसने क्या किया? तब यीशु आया, परमेश्वर का प्रकट प्रतिरूप, स्त्री का वंश, स्वयं परमेश्वर द्वारा गर्भित, वो महान शिल्पकार स्वयं के लिए एक देह तैयार की, उसे किसी से कोई लकड़ी उधार नहीं लेनी थी, किसी स्त्री या पुरुष से, उसने स्वयं ही एक घर बनाया। ओ प्रभु, मैं स्तफनुस के लिए सोचता हूँ, उस दिन जब वो खड़ा हुआ बोला, तुम हृदय और कान के खतरा रहित लोगों, तुम ढीठ, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने किया, वैसे ही तुम करते हो। सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु जो भी है परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, परंतु तूने एक देह तैयार की, उसे कहीं से कोई लकड़ी नहीं लेनी थी। इब्रानियों का 11वां अध्याय, मैं विश्वास करता हूँ दूसरा या तीसरा पद, उसमें ये कहता है कि संसार परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया, चीजें जो चीजें से बनी थी वो दिखाई नहीं पड़ती, बस परमेश्वर ने कहा ऐसा हो जाए और वहाँ वो था। उसे जाकर ये नहीं कहना था कि श्री चांद जी क्या तुम मुझे थोड़ी सी लकड़ी दोगे, श्रीमान तारा क्या तुम मुझे कुछ थोड़ा सा कैल्शियम दोगे, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। उसे ये नहीं कहना था मरियम तू मुझे एक अंडा उधार दे दे, मैं एक देह बनाना चाहता हूँ ताकि मैं उसमें रह सकूँ। परमेश्वर सृष्टिकर्ता बोला और वो उसी समय माँ बन गई। वो एक माँ नहीं थी, वो बस एक स्त्री थी जिसने उसके वंश को अपने में रखा, ये ठीक बात है। याद रखें, वो यीशु की माँ नहीं थी, संसार ऐसा कहता है। पवित्र शास्त्र में मुझे एक जगह दिखाएं, اس نے کبھی اس کو ماں کہا ہو. اب واپس وچن پر آئے. پرمیشور کی ماں آپ کے لیے لجا کی بات ہے, سمجھے. ایک دن کچھ لوگوں نے اس سے کہا آپ کی ماں آپ کو باہر دیکھ رہی ہے. اس نے کہا کون ہے میری ماں؟ اپنے چیلوں کی اور دیکھ کر کہا بھیجو میرے پتا کی اچھا پوری کرتے ہیں, میری ماں ہے. وہ اس کی ماں نہیں تھی, وہ بس ایک واتاورن تھی. پرمیشور اور بھی پریوگ کر سکتا تھا, پرنتو وہ سب سے نیچے والا ستھان لینا چاہتا تھا اور دکھایا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے. اسے اوپر اٹھایا کچھ نہیں میں سے کچھ بنا دیا. یہ پرمیشور ہے. وہ پرگٹ کیا ہوا پرتیروپ آیا یشو نشکلنک پریے ہزاروں میں سندر گھاٹی کی کمتنی شہروں کا گلاب او بھور کا تارا. وہ کیا تھا؟ وہ کس لیے آیا؟ اب ذرا دھیان سے سنیں کہ پرمیشور اور منشیہ کے بیچ پھر سے ایکتا کو استھاپت کرے. او بھائی کیا آپ دیکھتے ہیں؟ ان کی بابل کی ساری میناریں اور ان کی سب چیزیں جو پہلے تھیں کام نہیں کریں گی. ان کے سارے کل پترے اور ان کی ساری چیزوں نے پرمیشور کو اپسند کیا. اس لیے پرمیشور نیچے آیا اور استری کے گرب کو گربت کیا, اپنے ہی دوارا سویم کو ایک شریر بنایا اور ایمانویل ہو گیا. پرمیشور ہمارے سنگ, نہ کہ یہودی نہ ہی انیہ جاتی. پرنتو پرمیشور وہ یہودی نہیں تھا, وہ انیہ جاتی نہیں تھا, وہ پرمیشور تھا اور انیہ جاتی اس کے لیے کسی بھی سمے ایسے ہی تھے. اس نے کیول یہودیوں کو ایک راس کے سمان الگ کرنے کا یتن کیا. اس نے ہر پرکار سے اسے واپس لانے کا یتن کیا اور کیول ایک ہی مارگ تھا وہ استھاپت کر سکتا تھا کہ وہ واپس ویکتیگت کے پاس آتا جیسے وہ آرمبھ میں تھا. اور آج بھی ویسا ہی ہے, ایک ویکتی کے پاس, نہ کہ ایک نامدھاری کے, نہ کہ ایک سنستھا کے, نہ ہی لوگوں کے جھنڈ, پرنتو ایک ویکتی کے پاس. دھیان دیں کہ پرمیشور اور منشیہ کی ایکتا کو پھر سے استھاپت کرے. وہ واستوک پاپ بلی تھا, بھیڑ بکریاں اور آدھی آدھی کبھی بھی پاپ کو نہیں ہٹا سکتی تھی. پرنتو وہ جیون, کیونکہ جب بلیدان مارا گیا اور میمنے کا جیون سب سے سیدھا جیو, اس کا جیون وشواسی پر واپس نہیں آ سکا کیونکہ وہ ایک منشیہ تھا ایک پران کے ساتھ, اور بھیڑ کے پاس پران نہیں ہے. دیکھیں منشیہ کو چھوڑ کسی کے پاس پران نہیں ہے. پرمیشور نے ڈالا وہ پشو کا روپ, یہ سچ ہے, پرنتو اس نے اس پر پران ڈالا اور اسی نے اسے پشوؤں سے بھن کر دیا. وہ صحیح اور غلط کو جانتا ہے جب اس پر پران آیا. پرنتو وہ یاد رکھیں جب پرمیشور نے منشیہ کی رچنا کی اپنی ہی سمانتا میں کی اور تب وہ جیوت پرانی بنا. دیکھیے وہ ہو گیا, غلط اور صحیح کو جانتا ہے. اب دھیان دیں, پرنتو اب اس میں یشو آیا اور وہ پرمیشور تھا. اب کیول ایک منشیہ کا جیون دوسرے منشیہ پر ہی نہیں آ سکتا تھا, پرنتو پرمیشور کا جیون بھی اسے پرمیشور کا بالک بناتا ہے, اسے واپس اسی ایکتا میں لاتا ہے جس میں وہ گرنے سے پہلے تھا. اب ہمیں واستوک ایکتا مل رہی ہے. لوگ کوئی مجھ سے کہتا ہے بھائی برنم کیا اب ونس نہیں ہے, ونس والی سنستھا نہیں, پرنتو میں مسیح کے ساتھ ایکتا میں. دیکھیے وہ سنستھا والی ایکتا نہیں, ونس نہیں. اس نے پاپ کے قرض کا بھگتان کر دیا. اب پرمیشور اور منشیہ کے بیچ کی ایکتا کو پانے کے لیے یشو جب تک وہ یہاں شاریرک دیہ میں تھا نہیں کر سکا. اس لیے اسے پورا طے کیا پاپ بلی ہونا تھا تاکہ وشواسی کے سارے پاپ دوش اٹھا لے جائے, انہیں دور لے جائے تاکہ پوتر آتما منشیہ میں آ سکے اور منشیہ اور پرمیشور کی ایکتا کو پھر سے بنا دے. دیکھیے کچھ تو تھا جسے پھر سے استھاپت کرنا تھا. اب کیا پھر سے استھاپت ہو سکا جب پرمیشور کی آگیا پوری کی گئی؟ کیا سردوت اسے پورا کر سکے؟ اس کے پاس لہو نہیں ہے. کیا پرمیشور اسے پورا کر سکا؟ اس کے پاس لہو نہیں تھا. اور پرمیشور ماس اور لہو بنا تاکہ صحیح پرکار سے قرض کا بھگتان کرے اور پاپ کو دور لے جائے, کیونکہ کیول یہی مارگ تھا. بابل کی مینار نے انہیں سنسار میں الگ کر دیا اور بہت کچھ سنستھائیں اور ہر چیز ہر پرکار سے اسفل رہی. وہ آپس میں مل گئے سنسار اور وہ ساری چیزیں, پرنتو یہ پوری ریتی سے الگ ہونے جا رہا تھا. مہیما ہو, اب مجھے دھارمک انوبھوتی ہے بھائی. میں ایسا انوبھو کرتا ہوں کہ اب اپنا وشے لے سکتا ہوں اور پرچار آرمبھ کروں. اب تیار ہو رہا ہوں جہاں سے میں آرمبھ کر سکتا ہوں اور یہ میرے لیے بند کرنے کا سمے ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ میں اسے کبھی بعد میں پورا کروں گا. پرمیشور اور منشیہ کی ایکتا, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ وہ سب جو سمجھتے ہیں آمین کہیں. دیکھیے کیول یہی مارگ تھا کہ منشیہ اپنی مول استھتی میں پھر واپس آ سکتا تھا کہ اس پاپ کے دنڈ کا بھگتان کیا جائے. پاپ کا دنڈ کیا ہے؟ مرتیو. پاپ کی مزدوری مرتیو ہے. اور پرمیشور نے کہا جس دن تو اسے کھائے گا, جس دن تیرا یہ معاملہ ہوگا, اسی دن تو مر جائے گا. اور جب یہ ہوا اس نے اس کا سمبندھ توڑ دیا منشیہ کی سنگتی اور سب کچھ, اور پھر واپس نہ آ سکا جب تک اس دنڈ کا بھگتان نہیں ہوا تھا. اور کوئی بھی اس بھگتان کے یوگیہ نہ تھا کیونکہ ہر کوئی منشیہ جاتی کے ساتھ گر گیا, کیونکہ ہر جاندار منشیہ جاتی کے آدھین ہے اور وہ گر گیا. مہیما ہو بھائی. भाई मैक, मैंने आपको वहाँ बैठे नहीं देखा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम ये विश्वास करते हैं भाई मैक, मृत्यु दंड के अधीन आते हैं। भाई मैक, यहाँ इस आराधनालय में पास्टर हुआ करते थे जब मैंने छोड़ा। अब दूसरा भला बूढ़ा बैप्टिस्ट मिशनरी पास्टर बैप्टिस्ट वहाँ, जिसने पवित्र आत्मा पाया, समझे? अब ध्यान दें, वे परमेश्वर के साथ एकता में आ गए। अब जब हम देखते हैं कि दंड का भुगतान होना ही है, और कोई पशुओं के जीवन में उच्च प्रकार मनुष्य का जीवन है, और मनुष्य जाति गिर गई स्वयं से, तो फिर कैसे एक मनुष्य दूसरे को बचा सकता है? इसने परमेश्वर को लिया, और परमेश्वर आत्मा में मर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर को स्वयं में अपने को स्वर्गदूतों से नीचे होना पड़ा। इब्रानी पहला अध्याय पहला पद, उसने अपने आप को स्वर्गदूतों से नीचा किया ताकि मृत्यु को ले ले कि भुगतान हो, और मनुष्य और परमेश्वर की एकता को फिर से वापस ले आए ताकि पवित्र आत्मा वापस आ सके। पाप के कर्ज का भुगतान कर दिया गया था। यीशु को यह करना था कि पवित्र आत्मा को वापस लोगों को एक करने के लिए भेजे, जैसा ये अदन वाटिका में था। कर्ज चुका दिया गया जब यीशु मरा, ये तय हो गया। भाई आमीन। यदि मैं इसे आपके अंदर गहराई में बैठा सकूं, कर्ज का भुगतान कर दिया गया, मेमने को हैलेलुया, कर्ज चुका दिया गया, और पुरुष और स्त्री जो मुझे इस प्रातः सुन रहे हैं या मुझे टेप से सुनेंगे, आपका कर्ज चुका दिया गया है। आप अब वचन का फिर से अविश्वास ना करना, वचन पर वापस आए। इसका विश्वास ना करें, वो वचन था, महिमा हो। ईमानदारी से मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है, दंड का भुगतान हो गया, ये बस हो गया। कोई आश्चर्य नहीं स्वर्गदूत चिल्लाते और गाते हैं, स्वर्गीय गान गूंज गया। जी हाँ श्रीमान, खोई हुई भेड़ मिल गई थी, उसके लिए एक प्रायश्चित कर दिया गया था कि फिर से वापस ले आए। अलगाव का जल, परमेश्वर का वचन जो उसको पापों से धोता है। जब वचन मेरे स्थान पर मरा और फिर से जी उठा और मेरे जीवन में सर्वोत्तम हो गया, मेरे हृदय में आमीन, दंड का भुगतान हो गया, ये पूरा हो गया, हम छुड़ा लिए गए। कैथोलिक कलीसिया के द्वारा नहीं, यद्यपि हम सही में कैथोलिक चेलों वाले कैथोलिक, जी हाँ श्रीमान, रोमन कैथोलिक नहीं, अपने धर्म सिद्धांतों के साथ। हर चीज आपके धर्म सिद्धांत हैं, वचन नहीं। मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट आपके लिए लज्जा की बात है। परमेश्वर के प्रेम से अधिक पाप के प्रेमी, सुख के प्रेमी, संसार के खोजी, विलासिता, बाड़े में कटने वाले सुअर। शैतान अपने यंत्रों को उसी चीज को घोटने के लिए भेज रहा है, जैसे उसने अदन की वाटिका में किया था। हमारे सारे सेवकों के पास शिक्षा है, उनके पास पीएचडी एलएलडी है, इसका कोई लाभ नहीं। वचन का इनकार करना, ये अब भी शैतान की चालाकी है। इस प्रातः मैंने आपको वचन से सिद्ध कर दिया है, अब से आगे ये आप पर है। चेले यीशु के साथ भी चल रहे थे, उनमें एकता नहीं थी, उनमें एकता नहीं थी, नहीं, उनमें विवाद हुआ, इसके बाद कौन बिशप होगा, हम में से कौन बड़ा है। वे यीशु पर विश्वास भी नहीं कर सके, ये उसे समझ नहीं सके। तू दृष्टांतों में बातें करता है, हमें सीधा सीधा बता कि तेरा क्या अर्थ है। वहाँ यीशु और चेलों में एकता नहीं थी, या चेलों की यीशु के साथ और आपस में चेलों की, कोई नहीं। ये आपको ये दिखाने जा रहा है भाइयों, अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूँ कि ये आपके हृदय की गहराई में चला जाए, समझे? परमेश्वर की एक योजना है, उस योजना के बाहर मैं चिंता नहीं करता कि इसके पीछे कितनी बुद्धि है, कितने लाखों रुपए का ये भवन है, धर्म विज्ञान के कितने विद्यालय हैं, कितने पवित्र पुरुष और ये वो पवित्र पवित्र पवित्र, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि एक भी वचन जो बाइबल का है उसका इनकार किया जाए, ये शैतान का है। अब मैंने आपको परमेश्वर के लिखे हुए वचन से सिद्ध कर दिया है, नए से पुराने नियम तक, और मैं उसे नीचे दिन में ले जाऊंगा, यदि आप बस कुछ और मिनट बैठें। वे चेले जो यीशु के साथ साथ चले, उसके साथ सोए, उसके साथ खाया, उसके आश्चर्यकर्म देखे और उसके संग रहे, इतने समीप जितना कोई भाई हो सकता है, और फिर भी उनके अंदर नहीं, वे सुसमाचार प्रचार के लिए योग्य नहीं थे। यीशु ने कहा, तुम प्रचार मत करो, तुम यत्न भी ना करो, तुम यरूशलेम नगर में प्रतीक्षा करो, मैं प्रतिज्ञा को तुम्हारे ऊपर भेजूंगा, ये तुम्हारे लिए दिया गया है तुम्हारे ऊपर, तब ये तुम्हें एक कर देगा। अब पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे एक होंगे, जैसे आप और मैं एक हैं, और मैं जैसे मेरे पिता ने मुझे सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा है, ऐसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। उसी पिता ने जिसने पुत्र को भेजा पुत्र में आया, संयुक्तता एक है। उसने कहा यदि मैं अपने पिता के काम ना करूं तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मेरे कार्य जो मैं करता हूं इतना जोर से बोलते हैं, तुम पूरी रीति से बहरे गूंगे और अंधे हो यदि तुम ये नहीं देखते। ओ भाई, कहा तुम पाखंडियों, तुम आकाश के चिन्ह को समझ सकते हो परंतु समय के चिन्ह को तुम नहीं समझ सकते। यदि तुमने मुझे जाना होता तो तुम मेरे दिन को भी जानते। यशायाह ने तुम्हारे विषय में सही कहा है, तुम्हारे पास कान हैं और तुम इतने बहरे की सुन नहीं सकते, आंखें हैं इतनी अंधी की देख नहीं सकते। पौलुस प्रेरित ने ठीक कहा, अंत के दिनों में वे भक्ति का भेष धरेंगे और उसकी सामर्थ्य का इनकार करेंगे, और वचन के बाद वचन। इन अंत के दिनों में इन संस्थाओं में क्या होगा? तब उन्हें आश्चर्य होता है, मैं क्यों इस मनुष्य के द्वारा बनाए गए तंत्र के विरोध में जो शैतान का है चिल्लाता हूँ? देखिए, वे मूल्यवान बालक भेड़ों के समान बहकाए गए जो कि कटने के लिए जा रही हैं। प्रभु उन्हें बाहर ले आए। जी हाँ, चेलों में एकता नहीं थी, वे यीशु को नहीं समझ सके। उन्होंने कहा ओ, इन बातों को कौन समझ सकता है? देखिए, अब तक परमेश्वर उनमें नहीं था, वे बस एक साझेदारी की संगति में थे, वे बस उसके साथ थे। यही आज बहुत से अच्छे पुरुष हैं। उन्होंने शराब नहीं पी, झूठ चोरी कुछ नहीं किया, परंतु उनकी एकता परमेश्वर के साथ नहीं थी। वे अब भी परमेश्वर के साथ नहीं थे। देखिए, वे हो नहीं सकते। वो उन्होंने आश्चर्य कर्म किए, उन्होंने प्रेत निकाले, परंतु वे नहीं, ये वो नहीं है। उस दिन अखबार में मैंने एक लेख प्रेतों को निकालने के विषय में पढ़ा। लोग कहते हैं ओ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यही है, ये वो नहीं है। एक मनुष्य जो शैतान को निकालता है और परमेश्वर के वचन का इनकार करता है झूठा है। जी हाँ, वो कहता है कि वो प्रेतों को निकालता है, वे दावा करते हैं कि वे करते हैं, वो ये नहीं कर सकता यदि परमेश्वर के वचन के साथ नहीं है। यीशु ने ऐसा कहा है। और तब पेंतिकोस्त आया, परमेश्वर ने उन्हें फिर एक कर दिया। ओ प्रभु, तब वे परमेश्वर के साथ एकता में थे, परमेश्वर उनमें था। अब यदि आप लिख रहे हैं तो प्रेरित 4:32 बाइबल ने ये कहा, वे एक चित्त थे, एक आत्मा और एक मत। ओ भाई, क्यों? वे फिर वापस उस मूल में आ गए थे। केवल एक ही चीज थी जो छूट गई थी, पुराने नगर में थे या पुराने शरीर में रहे थे या एक मंदिर कि वे वहाँ रहें जो कि खराब हो गया था, क्योंकि उसे मरना और खराब होना था। परंतु आत्मा और जीवन और उद्देश्य, दूरदृष्टि यानी दर्शन में और सब चीज वे परमेश्वर के साथ थे, एक थे। ओ आदम, मेरे निराश भाई, शैतान आपको अपना झूठ फिर ना बताए, इसे फिर ना होने दें। शैतान आपको ये ना बताने पाए कि जो कहा है वो इसका मतलब नहीं, ये ठीक बात है। वचन का अर्थ, जी हाँ, यहाँ नहीं, मैं यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे पर बात कर रहा हूँ। ये ठीक है, एक प्रकाशन जो आता है ये सच्ची बात है, परंतु लोगों का झुंड क्या करता है? यहाँ पर एकत्र होता है और इसमें से एक नामधारी कलीसिया निकालते हैं, एक दूसरी बाबुल की मीनार बनाते हैं, वही चीज इसे वहाँ पहुँचा देती है। निश्चय ही लूथर ने भी यही किया, वेस्ली ने भी यही किया, जॉन स्मिथ ने भी वही किया, अलेक्जेंडर कैम्बेल ने वही किया, पेंतिकॉस्टल ने भी वही किया। परमेश्वर व्यक्तिगत व्यवहार करता है, अपने वचन को बनाए रखता है। परमेश्वर की केवल ये योजना है कि विश्वासियों को अपने पास ले आए एक सच्ची एकता में कि पवित्र आत्मा पाए। तब यहाँ की कैसे आप कहते हैं भाई बहनम, मैंने अन्य भाषा बोली है, मैं चिल्लाया, मैंने ये किया। यदि अब भी आप इस प्रकार की आत्मा आपके पास है और परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं तो परमेश्वर का वचन आप में नहीं है, आपके पास आत्मा नहीं है। यदि आप बैठे हुए सत्य के वचन का प्रचार सुनते हैं और इसे बाइबल में देखते हैं और देखते हैं कि ये सत्य है और इसे करने से इनकार करते हैं तो ये परमेश्वर का आत्मा नहीं। मैं चिंता नहीं करता कि आप अन्य भाषाओं में कितनी बातें करते हैं, आप कितना चिल्लाए हैं, आप कितनी कलीसियाओं से जुड़े हैं या आपने कितनी बार बपतिस्मा लिया है या कुछ और। वचन ही सत्य है, यही प्रमाणित सत्य है। यदि आपके पास ये सारे सत्य हैं और फिर वचन के साथ हैं, आमीन, तब आप जानिए कि आप घर आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि जिस परमेश्वर ने बाइबल लिखी और पलटकर अपने वचन का स्थान लेने के लिए कुछ और दे। तुम कैथोलिक जो कहते हो कि पत्रस तुम्हारे आराधनालय में गाड़ा गया और उसकी आत्मा तुम्हें पापों की क्षमा का अधिकार देती है और आदि आदि, कैसे पत्रस एक यहूदी आराधनालय में कभी मूर्तियां खड़ी करने देता? कैसे कभी पतरस इनकार के कहता उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता और वो अन्य भाषा में बोला और वो सामर्थ भरे काम जो उसने किए और पलट कर कहता ये छोटा सा वेफर पापड़ी लो और परमेश्वर उस पापड़ी में है। ओ ये कितनी अज्ञानता, आत्मिक अज्ञानता। ठीक है जब तुम प्रोटेस्टेंट हो तुम भी वही चीज हो और जाकर प्रचारक से हाथ मिलाओ और कहते हैं मैं यीशु को अपना व्यक्तिगत बचाने वाला स्वीकार करता हूँ और वापस जाकर किसी भी प्रकार का जीवन जिए और जाकर संसार के साथ जिए। बाबुल की दूसरी मीनार। अब हम अंत की ओर आ रहे हैं। ध्यान दें, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, वही एक है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकता बनाएगा। आइए इसे ढूंढते हैं। आइए चलिए, अब मैं चाहता हूं कि आप अपना पूरा ध्यान यहां अगले कुछ 5 मिनट के लिए दें। ध्यान दें, मनुष्य ने शैतान की योजना के अंतर्गत कलीसिया को एकता में लाने के लिए नामधारी कलीसिया बनाने का यत्न किया। आप ये जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा, नामधारी होने के द्वारा वे अब इसका यत्न कर रहे हैं। संसार की कलीसियाओं की सभा चल रहा है कि सारे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों को एक साथ लाने का यत्न करें और उन्हें एक बना दें। ये क्या है? शैतान की एक योजना। आप कहते हैं आप इस बात को कहने के लिए बहुत छोटे हैं। मैं छोटा हो सकता हूँ परंतु मेरे परमेश्वर का वचन महान और बड़ा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु ये नहीं, ये वो नहीं जो ये कहता है, ये वो जो वो है जिसने इसे पहले कहा। मैं केवल वो कह रहा हूँ जो उसने कहा, मैं उसके वचन को मान रहा हूँ। ये शैतान की अधीनता में है, ये वचन में यहाँ सिद्ध है। ठीक यहाँ इस प्रातः आपके सामने ये शैतान का है। कोई भी संस्थाएं हो, मनुष्य शैतान की योजना के अधीन लोगों को नामधारी के एकता में लाने का यत्न करता है। तुम सब आओ, असेंबली ऑफ गॉड के सदस्य बनो, वननेस के सदस्य बन जाओ, चर्च ऑफ गॉड के सदस्य बन जाओ, मेथोडिस्ट के सदस्य बनो, हम सब एक हैं। तुम पाखंडियों का झुंड हो, भक्ति का भेष भरते हो और उसकी सामर्थ का इनकार करते हो और परमेश्वर का वचन ठीक तुम्हारे सामने हिलाया गया और आप इस पर आक्रमण करने से डर गए। क्यों नहीं परमेश्वर ने अपने आप को दिखाया? यदि आप परमेश्वर के साथ थे तो फिर तुम क्यों नहीं परमेश्वर के कार्य करते हो? तुम वो रूप कैसे भर सकते हो और जाकर इसका इनकार करते हो, यहाँ तक कि परमेश्वर के वास्तविक कार्यों को बाल जबूर कहते हो? ये दिखाता है कि तुम शिक्षित लोग, तुम कलीसिया के सदस्यों का झुंड हो। यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान के हो। ठीक है, मैं निश्चित हूँ आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या अर्थ है। निश्चय ही किसी ने क्यों नहीं आक्रमण किया? आप जानते हैं परमेश्वर इसके पक्ष में है। परमेश्वर अपने वचन के साथ आगे बढ़ेगा। मनुष्य ये करता है, ये एक दूसरी बाबुल की मीनार बनाता है। वो क्या करता है? ये दिखाने का यत्न करते हैं। अब संसार की इस कलीसियाओं की सभा में देखो, एंग्लिकन, रोमन कैथोलिक, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल और वे सारे एक साथ मिल गए, क्रिश्चियन साइंस और उनमें बहुत से संप्रदाय जो कि कुंवारी के जन्म का इनकार भी करते हैं, जो उस यीशु के परमेश्वरत्व का इनकार करते हैं, उसे तीन लोगों में बांटते हैं, तीन ईश्वरों की आराधना करने का यत्न करते हैं और कुंवारी से जन्म का इनकार करते हैं। उनमें से कुछ लहू का इनकार करते हैं, उनमें से कुछ उसके आश्चर्य कर्मों का इनकार करते हैं। वे सब लगभग ऐसा ही करते हैं और एकता में आने का यत्न एक साथ करते हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं? ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई मीनार है, ये बाबुल के समान गिर जाएगी। परंतु परमेश्वर ने कहा ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा, प्रभु ने कहा। ऐसे ही मैं अपनी कलीसिया को एक करूंगा, संस्था के द्वारा नहीं, शिक्षा के द्वारा नहीं, धर्म विज्ञानियों के द्वारा नहीं, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा, प्रभु ने कहा। मैं अपनी भेड़ों को साथ ले आऊंगा, ओ प्रभु। और जब वो करता है तो क्या हुआ? उसके चिन्ह उसकी गवाही देंगे। इसराइल इस प्रकार से कह सका इसके पहले कि वो मोआब के साथ मिलते जुलते वहाँ उनके ऊपर अग्नि स्तंभ था। जी हाँ श्रीमान, वो क्या करेगा? वो गवाही देगा, उसी प्रकार की गवाही। परंतु उसके बाद जब वे अलग हो गए और ऐसे ही परमेश्वर से अपनी एकता, अपने और परमेश्वर के बीच की एकता से अलग हो गए और मोआब के साथ हो गए और उनमें सारी जय असफल हो गई, वे जंगल में 40 वर्षों तक टिके रहे जब तक कि परमेश्वर ने दूसरा झुंड बड़ा न किया कि उसकी योजना को पूरा करे। ठीक यही उन्होंने किया। अब देखिए, परंतु जब परमेश्वर अपनी आत्मा से कलीसिया को एक साथ लाता है तो उनके मध्य में जीवित परमेश्वर का चिन्ह होता है। किस प्रकार का चिन्ह? जब परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र से अलग किया, परमेश्वर ने मूसा और इसराइल को एक अग्नि स्तंभ का चिन्ह दिया। ये ठीक बात है, एक भविष्यद्वक्ता। और जब उसने अब्राहम को लूत से अलग किया तो एक स्वर्गदूत उसके पास आया जो हृदय के विचारों और हृदय की भावनाओं को परख सकता था। चिन्ह, हालेलुया। जब ये नामधारी जो इस कलीसिया में पकड़े गए, वे मिस्र जैसी एकता बनाने का यत्न कर रहे हैं, जैसे वहाँ अदन वाटिका में और आदि आदि, वे एक महान प्रभाव में हैं। परंतु देखिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने इसराइल को अलग किया, उसने उन्हें अलौकिक साइन दिया, एक अग्नि स्तंभ, उसने उन्हें भविष्यद्वक्ता दिया। उसने अब्राहम के साथ क्या किया? उसने हर बार क्या किया? मुझे उनके बीच में परमेश्वर द्वारा ठहरा हुआ भविष्यद्वक्ता दिखाएं। उसने अपनी कलीसिया को प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं और शिक्षकों और सुसमाचार सुनाने वालों के द्वारा व्यवस्थित किया। हालेलुया, आप वही हैं। फिर से एक कलीसिया जैसे उसने इसराइल को बाहर बुलाया। मैंने आपको बताया, मैं इस पर वापस आऊंगा। जी हाँ श्रीमान, उनके बीच में परमेश्वर द्वारा ठहराया हुआ भविष्यद्वक्ता नहीं है। नहीं श्रीमान, जैसा वे इसराइल और उनके साथ थे, ये क्या है? फिर से शैतान का एक मीनार। अब आगमन इतनी निकट की घटना, यीशु का दूसरा आगमन, वो अपने चुनेओं को एकत्र कर रहा है। मैं ये विश्वास करता हूँ। ओ, वे आएंगे पूरब और पश्चिम से। जहाँ लोथ है वहाँ उकाब जमा होंगे। ओ, ये क्या है? वो अपनी एकता रखता है, उसकी सच्ची एकता, स्वयं को उनके बीच में दर्शा रहा है। हर नामधारी में से अपने चुनावों को ला रहा है, हर प्रकार की कलीसियाओं से, हर जगह से अपने बच्चों को निकाल रहा है, उसके वचन के साथ साथ होते जा रहे हैं। क्या अब प्रभु यीशु का आगमन इतना निकट है, न्याय का आना, वो अपने चुनावों को एक साथ एकता में बुला रहा है, स्वयं अपने में उसी प्रकार की सेवा जो उसने की। आप जानते हैं कि मैंने कैसे इसे कलीसिया कालों में रूप दिया। यहाँ अधिक समय नहीं हुआ उस बड़ी मीनार के विषय में जो बनाई गई थी, जो पैरामिड कहलाई, परंतु चोटी का पत्थर इस पर कभी नहीं रखा गया। स्मरण करें, लूथर कैसे आया, फिर वेस्ली अल्पसंख्या में, और फिर आगे पेंटिकॉस्ट, और अब वो क्या कर रहा है? उसमें से बुला रहा है। उसने क्या किया? उसने चुनावों को बुलाया कि लूथर को बनाए। उसने लूथर में से चुनावों को बुलाया कि वेस्ली को बनाए। उसने उनमें से चुनावों को बुलाया कि पेंटिकॉस्टल को बनाए। अब वो चुने हुए पेंटिकॉस्टल में से बुला रहा है कि चोटी के पत्थर को बनाए, कि उसके अंदर आए। एक बिल्कुल उसी प्रकार की सेवकाई उसमें आ रही है। अपने बालकों को नामधारियों में से बुला रहा है, और जीवन के हर क्षेत्र से। उसने क्या किया है? उसने उनके साथ सच्चे शिक्षक रखे हैं, सच्चे भविष्यद्वक्ता जो उनके उसके वचन के साथ बोलते हैं। बाइबल, मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनती है, यीशु ने कहा। यदि ये तब उसकी आवाज थी या शब्द था, तो ये आज भी उसका शब्द है। उसके शब्द के विरोध में कुछ भी हो, ये भेड़ का भोजन नहीं है, वे इसका अनुकरण नहीं करेंगी। ओ भाई, पूर्व से, पश्चिम से, हर एक नामधारी से, हर संस्था से, वे पूर्व और पश्चिम से आए एक साथ जमा होने को। हम राजा के साथ भोजन करेंगे, उसके अतिथि के समान भोजन। ये यात्री कितने धन्य हैं, उसके पवित्र मुख का दर्शन जो कि दिव्य प्रेम से प्रदीप्त है। धन्य हैं उसके अनुग्रह में जो सहभागी हुए, उसके ताज में एक रत्न के समान चमकने को। यीशु जल्दी ही आ रहा है, तब हमारी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। हालेलुया। क्या हो यदि हमारा प्रभु इसी घड़ी में उनके लिए आए जो पापों से स्वतंत्र हैं? तब ये आपके लिए आनंद लाएगा या दुख की महान निराशा? परंतु जब हमारा प्रभु महिमा में आता है, तो हम उससे ऊपर हवा में मिलेंगे। हालेलुया। जी हां श्रीमान, ये क्या है? परमेश्वर के द्वारा भेजे गए शिक्षक, वे ठीक वचन के साथ बने रहेंगे, उस वास्तविक कलीसिया के साथ, एक भी बिंदु नहीं हटाएंगे। कोई मतलब नहीं संस्था क्या कहती है, वे इसके साथ नहीं जुड़े। भविष्यद्वक्ता, ना कि बनावटी विश्वास करने वाला, परंतु एक सच्चे भविष्यद्वक्ता के पास यहोवा यूं कहता है, और हर बार सही बिंदु पर। इसलिए वो अपनी कलीसिया में भेजा गया। उसने कहा कि वो ये करेगा। वचन का विश्वास करें, मत सार का नहीं, सिद्धांत मत का नहीं, परंतु वचन का। और ये करने के द्वारा वो अपने आप को उनमें वचन की पुष्टि करने के द्वारा दिखाता है, उसी जीवन को बना रहा है जिसमें वो एक बार रहा, फिर से रहता है, अपने वचन को पूरा कर रहा है। ओ प्रभु, ध्यान से सुने, पहला कुरिन्थियों 4:20 कहता है, परमेश्वर का राज्य उसका वचन सामर्थ बना। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, पहला कुरिन्थियों 4:20, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन सामर्थ बना। परमेश्वर का राज्य क्या है? ये आपके अंदर है, राज्य आप में है। और जब वचन वहाँ पर आता है, तब ये वचन क्या आरंभ करता है? ये स्वयं को सामर्थ में बदल देता है, ये कहे हुए को बनाता है ठीक वही जो कहा गया। आप नहीं कह सकते ये कहता है और ये कहता है और कार्यवंत करता है। आपको वही बात कहनी है जो ये कहता है। ये मनवा लेता है, ये नहीं कह रहा है भाई ये यहाँ अधिक निखरा हुआ है, मुझे अधिक बुद्धि मिलेगी, मुझे यहाँ से अधिक समझ मिलेगी। आप वचन के साथ बने रहें। देखिए यहाँ ये है और ये इसे सामर्थ बना देता है। यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। यीशु ने यूहन्ना 14:12 में कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, नहीं आप मुझे क्षमा करें, ये नहीं जो उसने वहाँ कहा। उसने कहा वो जो मुझ में विश्वास करता है वे काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तुम जो चाहो मांग सकते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, ये क्या है? आपको वचन के साथ ही रहना है, अपने आप को मार दो। मुझे सम्मत किया गया है कि हम में से बहुत से मित्रों ने पवित्र आत्मा पाया, परंतु हमने बस इतना ही पवित्र आत्मा पाया कि हमें अपने में एक स्थान पर बना दिया जहां हम झूठ नहीं बोलना चाहते, हम चोरी नहीं करना चाहते, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, परंतु परमेश्वर अपनी कलीसिया के हर रोम को भर देना चाहता है। वो आपके विचार को भरना चाहता है, वो आपके मस्तिष्क को भरना चाहता है, वो आपका रोम रोम भरना चाहता है, आपको अपने में पूरी रीति से मार देना चाहता है। या आपके विचार परमेश्वर में इतना समर्पित जब तक कि उसका वचन आपके द्वारा जी रहा हो। आप कुछ नहीं जानते, केवल परमेश्वर का वचन, बस वचन के साथ साथ बने रहें। ये जीवन है, यीशु ने कहा मेरे वचन जीवन है। वो उनके साथ उपस्थित है, शिक्षक जो बाइबल का विश्वास करते, भविष्यद्वक्ता जो सत्य वचन बोलते, जो कहते उन्हीं भविष्यवाणी को दर्शाते जो उन्होंने बीते युगों से होते हुए करी। उसने क्या किया? वो स्वयं को उनके मध्य में जीवित दर्शा रहा है, अपने वचन की पुष्टि कर रहा है। उसका वचन, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन सामर्थ बना। जबकि ये नामधारी मनुष्य के तर्क पर निर्भर करते हैं, मनुष्य के तर्क पर, अब ध्यान से सुनिए, वे हम मनुष्य के तर्क पर निर्भर नहीं करते। नीति वचन 3:5 में कहा अपनी समझ का सहारा न लेना, समझे, ये ना करें। कोई मतलब नहीं परमेश्वर का वचन कितना प्रतीत होता है। आप कहते हैं भाई ये ऐसा लगता है, ये ऐसे भी उतना ही अच्छा है, ये वो नहीं जो ये है, ये परमेश्वर का वचन है, इसे वैसे ही लीजिए जिस प्रकार उसे बोला गया। हवा ने कहा, शैतान ने हवा से कहा, मैं जानती हूँ परमेश्वर ने ये कहा, परंतु वास्तव में इसका अर्थ ये नहीं, इसका ये अर्थ है। और उसने इसका विश्वास किया, उसने इसका विश्वास किया, इसने एकता को तोड़ दिया, इसने संगति को तोड़ दिया, इसने संयुक्तता को तोड़ दिया, इसने संसार को तोड़ दिया, इसने जीवन को तोड़ दिया, इसने हर चीज को तोड़ दिया। और व्यक्ति जो एक वचन का अविश्वास करता है, परमेश्वर के वचन का, ये सारी संगति और सब कुछ तोड़ देता है। ठीक है, हम इसका विश्वास करते हैं या हम इसका विश्वास नहीं करते, हम इसी के साथ बने रहें। परमेश्वर ने ऐसा कहा, आइए इसी के साथ बने रहें। मुझे यह बहुत सारी बातें छोड़नी पड़ रही हैं क्योंकि समय पहले ही बीत गया। जैसे बीते समयों में जब मनुष्य ने ये किया, ये संसार पर न्याय लेकर आया, बाबुल की मीनार, केन के बालकों की संयुक्तता, छेद के बालकों के साथ न्याय को लाई, ये सदा से संसार पे न्याय लेकर आया है, समझे। ओ उसके साथ सच्ची एकता न्याय में उससे ऊपर उठ जाएगी, जैसे नूह के साथ उसके परिवार के साथ न्याय में हुआ। धर्मी नूह और उसका परिवार न्याय के ऊपर चला गया। उन्होंने क्या किया? वे चले गए। भाई लीवाई, यदि आप इसे यहाँ पकड़ लें तो यहाँ पर यह है, केवल यही प्रश्न है जिस पर असहमत हैं। वो विश्वास करता है कि कलीसिया न्याय में होकर निकलेगी। मैं इसे नहीं देखता, मैं इसका विश्वास नहीं करता। नूह कभी भी किसी न्याय से होकर नहीं निकला, वो न्याय के ऊपर चला गया। अब्राहम कभी भी आग में नहीं था, वो आग से बाहर था। इसराइल के न्याय में नहीं था, वो आग से अलग कर दिया गया था। न्याय से कलीसिया न्याय से ऊपर रहेगी, पवित्र आत्मा की नाव में पृथ्वी से ऊपर उठ गई। इस कलीसियाओं के संघ की ये बात इस संसार में कुछ नहीं है, केवल मूर्ख कुंवारियों की हलचल की पृथ्वी पर छूट जाए उस मसीह विरोधी की पकड़ में आने के लिए, परंतु वास्तविक कलीसिया वैसे ही तैरेगी जैसे नूह तैरा और महिमा में ठीक वैसे ही निश्चय चली जाएगी जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इसलिए वो उन्हें जमा कर रहा है। यही है जो आवाज आज सामने बोल रही है। यही जो परमेश्वर कर रहा है कि एक को लॉस एंजलिस से, एक को फिलाडेल्फिया से और एक को जॉर्जिया आदि आदि से स्थानों से एकत्र कर रहा है। उन्हें एक साथ एकत्र कर रहा है उसके लोग जो जीवित परमेश्वर के वचन का विश्वास करना चाहते हैं। जैसा नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आगमन पर होगा, जहां थोड़े से ही बचे, बहुत थोड़े से। ठीक है, हमारी पवित्र आत्मा की नाव परमेश्वर के न्याय के ऊपर तैरेगी, क्योंकि हमारा न्याय पहले ही हो चुका जैसे ही हमने यीशु को स्वीकार किया और उसने हमारा न्याय ले लिया। ये नामधारी यद्यपि बहुत हटीले हैं, वे हवा के समान हैं। उसे बुद्धि चाहती थी, परमेश्वर का वचन चाहे जो हो, या निमरोद अपनी मीनार चाहता था, चाहे वचन हो या ना हो, वे हटीले थे। हवा अच्छा जानती थी, शेत उन सुंदर स्त्रियों के लिए गिरावट में जाने से अच्छा जानता था, इसराइल बजाय व्यभिचार में जाने के वे इससे अच्छा जानता था। ऐसे ही आप, परंतु कुछ बहुत ही हटीले हैं, वचन हो या ना हो, धन्य हो परमेश्वर, मेरी माँ प्रेस्बिटेरियन थी, मैं भी वही होने जा रहा था, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। केवल यही था जो आप तब कर सकते थे। परमेश्वर आपके पाप में प्राण पर दया करे। आप इससे कैसे बचने जा रहे हैं जबकि आप जानते हैं कि ये सत्य है, और यदि आप परमेश्वर का वचन देखते हैं और फिर भी ये नहीं सोचते कि ये सत्य है, तो फिर आपके साथ आत्मिक विवेक में कुछ गड़बड़ है। ये बिल्कुल ठीक बात है। सारे राष्ट्र में देखिए और देखिए ये बातें कहाँ हो रही हैं। हम अंत के समय में हैं। मित्रों, क्या हम कलीसियाई कालों से होकर निकले हैं और जानते हैं कि लौदीकिया काल में क्या घटित होने जा रहा है? क्या हम उसमें होकर नहीं निकले? आप देखिए कि मेरा क्या अर्थ है। हम अंत के समय में हैं। परमेश्वर चुने हुओं को पृथ्वी के चारों दिशा से एकत्र कर रहा है। उसने कहा वो दूतों को भेजेगा और उन्हें इकट्ठा करे। क्या ये ठीक बात है? उन्हें एक साथ इकट्ठा करे, उन्हें जंगली झाड़ियों से अलग करे। आमीन। जंगली पौधे जलाए जाएंगे, ना कि गेहूं। ठीक है, परंतु वे इतने जिद्दी हैं, वे इसे लेने जा रहे हैं या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ओ, परंतु परमेश्वर के चुने हुओं को आज्ञा है कि उनके बीच से निकलकर बाहर आएं, अलग हो जाओ। परमेश्वर ने कहा, और मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, उनकी संसारिक चीजों को न छुओ, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा या परमेश्वर, और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां होगे। अविश्वासियों के साथ जुए में न जुटो, परंतु उसमें से बाहर आओ। परमेश्वर संसार से अलगाव चाहता है, वो आपके साथ एक हो जाना चाहता है स्वयं से, और मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई भी संस्थागत योजना नहीं, नामधारी नहीं, कोई भी मनुष्य द्वारा बनाई गई व्याख्या कभी नहीं टिकेगी। ये परमेश्वर को ही लेंगे, पवित्र आत्मा को आप में, कि आपको परमेश्वर के साथ मिला दे। और आप कैसे जानते हैं कि आपको मिला है? पवित्र आत्मा, जिसने वचन को लिखा, हर वचन के साथ गवाही देगा, और वही चीजें जो पवित्र आत्मा ने पुराने नियम में किया वो नए नियम में भी करेगा, अब भी वैसा ही करेगा, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। और आप संस्थाओं के साथ और संसार के साथ ना जुटो, आप उनके संग जुए में ना जुटो, स्वयं को उनके साथ ना जोतो, परंतु उनमें से निकलकर बाहर आओ। आप मसीह के साथ जुटे हुए हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के साथ जुए में आ जाओ। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में कलीसियाएं होंगी जो कि बाबुल की दूसरी मीनार के समान होंगी। वे भक्ति का भेष भरेंगी और परमेश्वर के वचन और सामर्थ और उसके वचन की सामर्थ का इनकार करेंगी। और वचन क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? इसके पहले कि हम कभी राजा की प्रजा बने, हमें राज्य से होना है। कितने ये जानते हैं, कहें आमीन। आप राज्य में कैसे आएंगे? परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का वचन है जो सामर्थ में वापस आया। आमीन। सामर्थ बना, पाप को ले गया, चिन्ह दिए। किस प्रकार के चिन्ह? यदि ये वही वचन है जो मूसा को बाहर निकाल कर लाया, तो ये वही चिन्ह लाएगा, वही चीज जिसने गुनगुने लूत को अलग किया। अब हम जानते हैं कि लूत गुनगुना था, और यीशु ने कहा अंत के समय एक चिन्ह होगा। गुनगुना लूत वहाँ बैठा है, वो धर्मी था, निश्चय ही वो और उसकी पत्नी और वे हर प्रकार के झुंड के सदस्य थे, और वो नगर का अधिकारी था। ओ, और सब प्रकार की बातें चल रही थी, वो बहुत धर्मी था, वो सुसमाचार प्रचारक और आदि आदि का स्वागत कर सकता था जो आते थे। उस प्रकार से वो ठीक था, परंतु ओ भाई, वो चुना हुआ नहीं था। देखिए क्या हुआ, क्यों? वही परमेश्वर जिसने अलग किया, अब्राहम के पास आया और उसके अलगाव को प्रमाणित किया। ओ परमेश्वर, मेरी कितनी इच्छा है कि मैं सकूं, मेरी इच्छा है मैं कुछ कर सकता कि आपको ये दिखाता। परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया जो कि वह स्वयं से अलग हो गया था। उसने इसका प्रमाण दिखाया कि वो उसके साथ था और ठीक उसके अंदर। और यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में यही चीज घटित होगी। ना कि एक राष्ट्र था अब्राहम, वो अल्पसंख्या में था, परंतु परमेश्वर उसके साथ था, तब उसने उसे अलग कर दिया था। हमें स्वयं को इन अंत के दिनों में अलग करना होगा। और यदि परमेश्वर ने मूसा को चिन्ह दिया, इसराइल को अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता, एक अग्निस्तंभ, अब्राहम को एक चिन्ह दिया, उसने इसराइल को एक चिन्ह दिया, उसने प्रेरितों को एक चिन्ह दिया, वही चिन्ह हर बार, वही चिन्ह अग्निस्तंभ। पौलुस जब वो दमिश्क के लिए अपने मार्ग पर था, वहाँ अग्निस्तंभ उसके सामने चमका जिसने उसकी आंखों को अंधा कर दिया, उसे घुटनों के बल कर दिया। किसी ने इसे नहीं देखा, हर कोई आसपास खड़ा था, उन्होंने इसे नहीं देखा। और एक आवाज ने कहा, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। एक चिन्ह, और वो क्या था? अन्य जातियों के लिए प्रेरित। आमीन। यहाँ हम अंत समय में हैं, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उस रैप्चर याने उठा लिए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ मिनटों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जब तक हमारा हर रोम रोम पवित्र आत्मा से भर जाए, तब ऊपर चली जाएगी। ओ प्रभु अपने लोगों को अपने पास जमा कर रहा है, अपने में सच्ची एकता के साथ, क्योंकि ये उसका एक ही पवित्र आत्मा है। एक ही आत्मा से हम सब ने व्यक्तिगत रीति से एक देह में बपतिस्मा लिया, मिलकर यीशु मसीह की देह। और यीशु मसीह अपने आत्मा के साथ हमारी देह में रह रहा है, कलीसिया की सेवा कर रहा है और उन्हीं कामों को कर रहा है जो उसने चिन्ह के समान किए, संसार के लिए एक चिन्हानी कि हम अंत के दिनों में हैं, उठा लिए जाने के लिए तैयार हैं। ओ मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते? अभी यहाँ मेरे पास एक पुस्तिका है, परंतु मैं और अधिक लंबा नहीं जा सकता, हमें बहुत देर हो रही है। हो सकता है फिर किसी समय लूंगा। हम लोग अंत में हैं, वननेस, एकता। क्या आप परमेश्वर के साथ एक हैं? इसी प्रकार से आपको होना है। जी हाँ, हम उसके साथ एक होने जा रहे हैं। वो मन जो मसीह में था तुम में हो, तब मसीह उसका संपूर्ण मन तुम में होगा और हर वचन को पहचानेगा जो उसने लिखा। ये प्रेरितों में हुआ, वचन को ठीक ठीक बांटा जो कि सत्य है। देखिए पवित्र आत्मा, यदि ये सत्य है तो वो इसकी गवाही देगा, उन्हीं चिन्हों के लाने के द्वारा जो उसने मूसा को दिए थे, वही चिन्ह जो उसने अब्राहम को दिए, वही चिन्ह जो उसने मसीह के द्वारा किए, वही चिन्ह जो पौलुस के द्वारा किए। हम अंत के समय पर हैं, उसने कहा ये होगा। हम अंत के समय में हैं, कलीसिया मिलकर एक साथ एकता में आ रही है, एक यहाँ और एक वहाँ बन रही है। उसने कहा दो जन खेत में होंगे, मैं एक को ले लूंगा, एक देखिए दो खेत में, ये दिन के समय होगा, कटाई में एक को ले लूंगा और एक को छोड़ दूंगा। दो जन पलंग में होंगे, संसार की दूसरी ओर मैं एक को लूंगा और एक को छोड़ दूंगा, मनुष्य के पुत्र के आगमन पर। और ये इतना संकट भरा होगा, ये बहुत ही पास है। आदम आदम मत करो, मत करो। हवा आदम, मैं आपको चिल्ला कर बता दूं, शैतान के झूठ को और ना सुने, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें। ये यहोवा यूं कहता है, उसके वचन के साथ बने रहें। अपनी संगति को परमेश्वर से तोड़ देने से अलग रहो। परमेश्वर की एकता पवित्र आत्मा के द्वारा है। तब यदि आप कहते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है और ये वचन के साथ सहमत नहीं है, तो फिर आप परमेश्वर के साथ एकता में नहीं है। परमेश्वर की एकता ये है जब आप वो आत्मा जो आपके पास है इस वचन के साथ सहमत है और इस वचन को प्रकट करता है और इस वचन को समर्थ बनाती है कि उसी प्रकार व्यवहार करे जो वहाँ किए गए। हम इसे एक साथ बोलें, एकता परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का आत्मा अपने में होना, आप में सहमत हो रहा है वचन के साथ, सारे वचन के साथ, संपूर्ण वचन, और इसे बनाएं, प्रकट करें सामर्थ में। आप यही हैं, ये परमेश्वर के साथ एकता है।
When that power works in me, works in you,
जब सामर्थ मुझ में आप में कार्य करती है, हम एक हैं। आमीन। भाई किड, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में आप में कार्य करती है, आमीन, ये वही करता है जो वो है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप में देह बना, वचन आपके मध्य में हर वचन को सामर्थ बनाता है। अब याद रखें, शैतान वचन के उस सारे भाग को निकाल देता है। इसका लगभग 99.99% उस 100 का 99.99 वो उसे ठीक बना देगा, परंतु फिर वो कूद कर भाग जाता है। और यही वो एक बात है जो वहाँ मृत्यु का कारण होता है। ये क्रम को बीच में से तोड़ देता है, आप नीचे चले जाते हैं। हर वचन जो यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता परंतु हर वचन से, ना कि परमेश्वर के थोड़े वचनों से वो जीता है, ना कि 99.99% परमेश्वर का वचन, परंतु प्रत्येक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकल रहा मनुष्य उसी से जिएगा। शैतान उसे वहाँ ले जाकर बोला, ये लिखा है, जैसा उसने हवा से कहा था, ये लिखा है, ये लिखा है। यीशु ने कहा, और ये भी लिखा है। उसने कहा, ये लिखा है, वो तेरे लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। बाइबल ऐसा कहती है, लड़के वो एक ज्ञानी है, ये लिखा है, वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तेरे पाँव में पत्थर की ठेस ना लगे, वे तुझे उठा लेंगे। उसने कहा, ये भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले। उन्होंने कहा, हमारे पास वचन है, प्रेरित 19, हमारा बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा हुआ है। पौलुस के पास कुछ और था, उसने कहा, अब ये और नहीं चलेगा, समझे। यूहन्ना ने केवल बपतिस्मा दिया, उसने यूहन्ना के वचन का अविश्वास नहीं किया। उसने कहा, मैं बताऊंगा कि यूहन्ना ने क्या कहा। यूहन्ना ने कहा, वो प्रायश्चित का बपतिस्मा देता है, ना कि पापों की क्षमा का। बलिदान चढ़ाया नहीं गया था, देखा। उसने कहा, उसने प्रायश्चित के लिए बपतिस्मा दिया, कहा तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए जो आने वाला था। और जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने अपने हाथ उन पर रखे, वचन से भरे हुए, और पवित्र आत्मा उन पर उतरा। वे भविष्यवाणी और अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर की महिमा हो, महिमा की। और क्या ही समय था, ओ प्रभु, ये कितनी बड़ी कलीसिया थी, 12। जी हाँ, ओ परमेश्वर बड़ी संख्या से व्यवहार नहीं करता, वो ईमानदार हृदयों से बातचीत करता है। हमारे पास वैसा ही हृदय हो, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आइए प्रार्थना करें। ओ मेरे प्रिय भटकने वालों, क्या तुमने मोआब की बेटियों को देखा, और क्या तुमने केन की बेटियों को देखा? मैं कलीसियाओं के लिए बोल रहा हूँ, वे वचन से कितनी दूर भटक गए हैं। क्या आप मेरे मूल्यवान मित्रों, क्या आपने ध्यान दिया कि अंत के दिनों में ये बातें घटित होनी हैं? क्या हाल ही में आपने ध्यान दिया कि कैसे परमेश्वर का वचन प्रकट हो रहा है? कैसे ये बेदारी जो एक बार छा गई थी नीचे आ गई, अब अधिक नहीं बचा? ये क्या है? ये तूफान से पहले का सन्नाटा है, न्याय तैयार है। क्या आप इन बातों का अर्थ समझ रहे हैं? क्या आपने वचन से वचन को मिलाया, बाइबल का वचन बाइबल के वचन से, प्रमाण के साथ प्रमाण? क्या आपने यीशु के वचन की तुलना की? उसने कहा, शैतान अंत के दिनों में ये इतना समीप होगा जैसे कि सच्चा वाला, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को छोड़ हरेक को धोखा दे दे। चुने हुए, जरा सोचिए, वचन की शिक्षाएं इतनी मिलती जुलती। ओ हम पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं, परमेश्वर सदा धन्य है। हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं और पलटकर वचन का इनकार करते हैं। जी हाँ, देखिए, यदि संभव हो तो चुनावों को धोखा दे देंगे। यदि यहाँ कोई ऐसा है जिसका मामला परमेश्वर के संग ठीक ना हो, यदि यहाँ कोई ऐसा है जो बीमार और अपाहिज हो, तो यहाँ रुमाल और चीजें रखी हैं, मैं उन पर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मुझे चिंता नहीं कि आपकी क्या जरूरत है, पुस्तक की हर प्रतिज्ञा आपकी है, ये आपका है। अब मैं आपके पास वचन ला चुका हूँ, उत्पत्ति से यहाँ आज के दिन तक जिसमें हम रह रहे हैं, उन स्थानों पर ध्यान किया और आपको दिखा रहा हूँ बहुत से सैकड़ों स्थान जिन्हें इनको छोड़ ध्यान कर सकते थे। मेरे पास समय नहीं है, परंतु निश्चित तौर पर इसमें आप ये देख सकते हैं कि संस्थाओं का मामला समाप्त है। ये शैतान की गलत धारणा है, लोगों को संस्थागत करने का यत्न कर रहा है, मनुष्यों के अपनी विचारों और सोच से एकता में लाना, जबकि ये पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से जैसे एक होकर जुड़ गए और पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के साथ सहमत है। देखिए, बाइबल ने कहा, यीशु ने ये कहा, यहाँ तक कि वे इसे मान भी लेंगे। आप समझे, यदि हो सके तो चुनौतियों को बहका दें। आप देखिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आप परमेश्वर के इस वचन को विश्वास के हाथ में पकड़ लें। आज प्रातः आपको किसी चीज की आवश्यकता है? आपको यीशु मसीह के नाम में जल के बपतिस्मे की आवश्यकता है? कुंड तैयार है। आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता है? वो अपने मार्ग में मार्ग को आप में लाने का यत्न कर रहा है। आपको चंगाई की आवश्यकता है? क्यों? वही पवित्र आत्मा स्वयं वचन को जो सामर्थ बन गया वो अब ठीक यहाँ पर है। विचारों को परखने की वही सामर्थ वहाँ भक्त मंडली को देख रही है और देख रही है कि ज्योति दीप्त के समान मंडरा रही है। क्या मैंने कभी आपको कोई गलत बात बताई? क्या मैंने कभी, जैसे भविष्यद्वक्ता ने इसराइल से मनुष्य द्वारा बनाया गया राजा बनाने से पहले कहा, उसने कहा, क्या मैंने कभी तुम्हारे पैसे लिए? क्या मैंने कभी आकर तुमसे पैसे मांगे और चारों ओर चक्कर लगा और बड़े महलों में रहा और बड़ी बड़ी बातें और तुमसे तुम्हारे पैसे लिए? क्या कभी मैंने तुमसे एक पैसा मांगा? कभी नहीं। क्या मैंने कभी तुम्हें प्रभु के नाम से कोई बात बताई जिसे परमेश्वर ने घटित ना किया हो? क्या मैंने कभी उसके नाम से कोई बात कही और वैसा नहीं था? क्या मैंने कभी भक्त मंडली में दर्शन बताया, क्या वो बिल्कुल ठीक नहीं था और व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया, अपरिचित या जो भी रहा वो हो सकता था, सिवाय जो उसने कहा वो सत्य है? क्या मैंने कभी आपको कोई गलत बात बताई? तो फिर मैं आपको अब बता दूं, यहोवा यूं कहता है, पवित्र आत्मा ले लो, आत्मा परमेश्वर के वचन को उन विश्वास के हाथों में दे देगा जो आगे बढ़े। सारे राज्य आपका है बालकों, ये तुम्हारा है। आप लोग क्यों जॉर्जिया और समस्त राष्ट्र ओहियो से कैनसास और सब जगहों से इस छोटी सी सभा के लिए आए हैं? मैं सोचता हूं कि अब टेप बंद हो गए हैं ताकि मैं ये कह सकूं। आप लोग क्यों ऐसे आ रहे हैं? कौन आपसे ये करवा रहा है? ये क्या है? मैं देखता हूँ लोग यहाँ अरकनसास से सैकड़ों मील दूर से यहाँ है। बीती रात मैं वहाँ कैनसास शहर से आ रहा था, एक छोटा पोलैंड का एक भाई वहाँ खड़ा था, अगुवाई में आया, बोला, भाई बर्नम, जब से मैंने आपको पहली बार वहाँ कनाडा में वर्षों पहले सुना था और वे चीजें जो आपने देखी और की, मैंने उन्हें पूरी रीति से आगे पीछे ऊपर नीचे भली प्रकार से जांचा और बोला, उनमें से एक भी कभी गलत नहीं निकली। वो शायद पोलैंड का कैथोलिक था और वो यहाँ आकर टेप लेता है और बाहर जाकर उन्हें चलाता है, विरोधों का सामना करता है। वे सेवक जिन्हें मेरे साथ हमारी सहायता के लिए होना चाहिए, परंतु सामर्थ का इनकार करते हैं, वचन की सच्चाई को नकारते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा है। मैंने अपने आप को भविष्यद्वक्ता नहीं कहा, आपने ये कहा, परंतु यदि ये ऐसा है तो फिर परमेश्वर का वचन कहाँ से आता है? हम कैसे जानते हैं कि ये सच है या नहीं जब तक कि इसके पक्ष में कुछ ना हो? वही परमेश्वर का वचन यहाँ है, लिखित वचन, और तब यदि ये लिखे हुए वचन का समर्थन हुआ तो फिर ये परमेश्वर उस वचन में उस वचन को सत्य ठहरा रहा है। पौलुस ने कहा, मेरे पीछे चलो जैसा मैं मसीह के पीछे चलता हूँ। अब यदि आपको बीमारी उद्धार के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है, क्या पीछा छुड़ाना, आप में से कुछ स्त्रियों के पास इतना भी अनुग्रह नहीं कि अपने बाल बढ़ने दें, आप में से कुछ पुरुषों के पास इतना भी अनुग्रह नहीं कि सिगरेट पीना छोड़ दें, आप में से कुछ प्रचारों के पास इतना भी अनुग्रह नहीं कि यीशु मसीह के नाम के पानी के बपतिस्मे की सच्चाई को स्वीकार कर लें, आप में से कुछ बीमार लोग जो बीमार हैं और बीमारी की बीमार ही मर जाएंगे, क्यों नहीं आप आज प्रातः इस वचन को लेते? अब मैं आपको बताऊंगा, यह हमारे बीच में देह है, उस वचन को अपने हाथों में ले लें। यहाँ प्रभु के दूत का एक चित्र दीवार पर टंगा है, यही है जिसने इसराइल के बालकों की अगुवाई की, यही है जो पौलुस से मिला, यही है जो मसीह में था, और वही पवित्र आत्मा आप में है, आप में आपको एक बना रहा है। सैकड़ों मील दूर से क्या है जो हमारे हृदयों को एक साथ मिलाता है? राष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है, वे वचन के पास आ रहे हैं। एक सोता है जो लहू से भरा है, इमैनुएल की शिराओं से निकलता है, जहां अविश्वासी उसमें गोता लगाकर अपने सारे पापों के दागों को धो देते हैं। जब से विश्वास के द्वारा मैंने इस धार को देखा, तेरे बहते हुए घावों ने बहाया, छुड़ाने वाला प्रेम मेरा विषय रहा और मेरे मरने तक रहेगा। हमारे स्वर्गीय पिता, यहाँ रुमालों दस्तानों का ढेर है, ये हो सकता है डाक में जाए, मैं नहीं जानता किसने इन्हें यहाँ रखा है, हो सकता है बिली ने, हो सकता है यहाँ भक्त मंडली के लोगों ने, प्रभु अब मुझे इसे करने की अनुभूति हो रही है। मेरे हाथों में कुछ नहीं है, एक मनुष्य के नाते मुझ में कुछ नहीं है, मैं अपनी मनुष्य की समझ पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं नहीं समझता क्यों ये ऐसा है, परंतु मैं वो कर रहा हूँ जो आपने कहा। उन्होंने पौलुस की देह से छुआ कर लिए, वे रुमाल और कपड़े और प्रेत आत्माएं लोगों में से निकल गईं। ये इसलिए नहीं कि वो महान पुरुष था, ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर उसके साथ वचन में और सामर्थ में था, और उसने कभी भी प्रेतों से सलाह नहीं दी, परंतु जब वे मिले तो उन्होंने पाया कि वही सुसमाचार, बपतिस्मे का वही तरीका, हर चीज एक सी जो वे कर रहे थे, बिल्कुल एक दूसरे के समान। अब मैं प्रभु मांग रहा हूँ इन मूल्यवान लोगों के लिए जो आप पर विश्वास कर रहे हैं, आप उन्हें चंगा करेंगे, उन्हें चंगा कर दें प्रभु जो भक्त मंडली में हैं, उन्हें पाए उनका विश्वास ऊंचे पर हो जाए, और अब उस वचन को पकड़ लें और कहें, थोड़े बीमारियां दोस्त तू मुझे छोड़ जा, मैं परमेश्वर की तलवार से काट रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मेरा विश्वास मजबूत है, मैं तलवार को गहराई में घुसा रहा हूँ, मेरे मार्ग से हट जा और मैं चंगा होने के लिए अपनी कुर्सी से उठ रहा हूँ, मैं अपना हाथ अपने पिता पर रख रहा हूँ, अपनी बहन पर और मेरे बालक, मेरे पड़ोसी पर, मैं विश्वास कर रहा हूँ तेरा वचन सच्चा है, मैं आपके साथ एकता में हूँ, वे कार्य जो आपने कहे कि आपने किए हम भी करेंगे। प्रभु परमेश्वर, मैं हर वचन का विश्वास करता हूँ और मैं सामने आ रहा हूँ दावा करने के लिए, सामने आ रहा हूँ कि इस प्रातः इसे ले लूं। ओ परमेश्वर, ओ मैं कैसे सोच सका जब कलीसिया आगे बढ़ रही थी, जब मूसा सागर पर थोड़ा सा डर गया था और वो प्रभु की दुहाई देने लगा और प्रभु ने कहा, तू क्यों मेरे लिए चिल्लाता है, तू क्यों मेरी दुहाई देता है, बोल और आगे बढ़ जा, क्या मैंने तुझे ये प्राधिकार नहीं दिया, बोल, क्या बोल, परमेश्वर का वचन ये तेरे अंदर है, बोल और आगे बढ़, मेरी दुहाई मत दे, आगे बढ़। और मैं प्रभु परमेश्वर, आज मैं प्रभु यीशु के नाम से आता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि ये तलवार देने आता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य की एकता का दावा कर रहा हूँ, यीशु मसीह उसके पुत्र के बलिदान और दया में से होते हुए, मैं हर शैतान को चुनौती देता हूँ जिसने किसी को भी किसी प्रकार से इस भवन में बांधा हुआ है, चाहे वो लड़का या लड़की, पुरुष या स्त्री हो, मैं हर बीमारी को चुनौती देता हूँ, मैं हर संदेह को चुनौती देता हूँ, मैं हर भय को चुनौती देता हूँ, मैं हर उस चीज को जो परमेश्वर से नहीं है चुनौती देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इस भक्त मंडली से चली जाए, भक्त मंडली से बाहर आ जाए, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक हो सकें और परमेश्वर की सेवा बिना बीमारी या भय के कर सकें। होने पाए वो सामर्थ जिसने हमें परमेश्वर के साथ एक किया, कैसे ये शैतान अभिषिक्तों के आसपास चीख सकता है, कैसे वो शैतान वहाँ खड़ा होकर गोलियत के समान चिल्ला सकता है, जब दाऊद पड़ाव में आया बोला, तुम्हारा अर्थ है कि वो खतना रहित फिलिस्तीनी वहाँ खड़े होकर जीवते परमेश्वर की सेना को चुनौती दे सकता है, ओ परमेश्वर, पुरुष और स्त्रियों को आत्मा की सामर्थ में उठा, उन बिना हृदय परिवर्तन वाले और वे निराश शैतान जिसने युगों से मानव जाति को हानि पहुंचाई और यहाँ खड़े होकर जीवते परमेश्वर की कलीसिया को चुनौती देता है, शैतान तू बाहर आ जा और छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। अब जिनके पास पर्याप्त सामर्थ है कि तलवार निकालें, अब आपको परमेश्वर के वचन की इतनी समझ मिल गई है कि इसे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति होने का दावा करें, जो परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में ले सकते हैं, इसे विश्वास के हाथों से पकड़ लें और कहें, मैं अपना पक्ष प्रभु के साथ लेता हूं, मैं अपने परमेश्वर के साथ एक हो जाऊंगा, आज के बाद मैं इस आत्मा की तलवार को इस वचन से लूंगा और परमेश्वर की दी हुई हर प्रतिज्ञा को जो मुझे दी गई है उससे शैतान को काट दूंगा। यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं तो मैं अपने हृदय की सच्चाई से आपसे कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में अपने पैरों पर खड़े होकर इसे स्वीकार करें। क्या आपके लिए इसका अर्थ है? आप निष्ठावान हैं? क्या वचन आपके हाथों में है? क्या आपका हाथ आपका विश्वास है? तो फिर अपना शारीरिक हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं, कहें, परमेश्वर इसके द्वारा, मेरे हाथ उठने के द्वारा मैं अपने सारे जीवन भर शपथ खाता हूँ, मैं अपने प्राण में शपथ लेता हूँ, मैं अपने विचार में शपथ लेता हूँ, मैं परमेश्वर के हर वचन में शपथ लेता हूँ कि पवित्र आत्मा अब मेरे विश्वास को ले और मुझे वो चीज दे, मुझ में से हर संदेह को काट दे, और विश्वास के द्वारा मैं प्रतिज्ञा को लेता हूँ जो मैंने इस घड़ी से मांगा है। यदि आप इसका विश्वास करते हैं तो आमीन कहिए, फिर से आमीन कहें, आमीन आमीन आमीन। तब यदि आपका अर्थ आपके पूरे हृदय से है, यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ जो आपने मांगा है, आमीन। आप अपने सारे हृदय से विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आई नेविल।